ना श्री माधवेंद्र पुरी का तिरुभाव दिवस है। ये हमारी परंपरा में बहुत ही महान आचार्य हैं श्री माधवेंद्र पुरी। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु रहे हैं ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु हैं श्री माधवेंद्र पुरी। अद्वैत आचार्य के गुरु हैं माधवेंद्र पुरी। नित्यानंद प्रभु के गुरु हैं माधवेंद्र पुरी। तो आज का दिन बहुत पवित्र है उनकी लीलाओं को सुनने के लिए और हमारे हृदय को शुद्ध बनाने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरी के बारे में बोलते थे कि भक्ति का जो वृक्ष है उसकी जड़ उसका रूट माधवेंद्र पुरी है और भक्ति के जो वृक्ष है उसका ट्रंक उसका बीज का भाग भी माधवेंद्र पुरी है। और जो भी राधा भाव दिखाई पड़ता है हमारी परंपरा में राधा रानी की विशेष अलग से आराधना ये माधवेंद्र पुरी की देन है। उन्होंने एक माधुर्य रस के जो है विशेष रूप से प्रकट किया था। तो आज मैं अपने शुद्धिकरण के लिए श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवादित चैतन्य चरितामृत से माधवेंद्र पुरी के चरित्र को पढ़ूंगा और वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य भागवत में एक बहुत सुंदर लीला लिखी है जिसका नाम है माधवेंद्र पुरी का तिरुभाव उत्सव। आज के दिन अगर आप शांतिपुर में जाओगे तो बहुत बड़ा उत्सव होता है और लाखों की संख्या में लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है और वहां के इस्कॉन के डिवोटीज जाते हैं और सब स्पेशली कविचंद्र महाराज प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और सबको प्रसाद वितरण किया जाता है लोकल लोगों को। अद्वैत आचार्य ने ये फेस्टिवल मनाया था अपने गुरुदेव के तिरुभाव दिवस में। तो मैं बाद में पढ़ूंगा इसलिए आज तो रेगुलर जो चेतन चरितामृत जो टॉपिक ले रहे थे वो मैं बाद में दोपहर के समय 12 बजे से 2 बजे क्लास में लूंगा और शाम के समय हम लोग चैतन्य भागवत चर्चा करेंगे। अभी मैं प्रभुपा जी का एक छोटा सा लेक्चर सुन रहा था 10-15 मिनट के लिए। प्रभुपा जी कह रहे थे कि व्यक्ति को अपनी चेतना को ऐसे सुधारना चाहिए जिससे उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़े। और श्री प्रभुपा जी ये भी बता रहे थे अगर कोई भक्त अपनी भक्ति को पूरा नहीं करता तो भी उसको कम से कम एक अच्छा शरीर प्राप्त होता है। शुचि नाम श्रीमत नाम गे है योगो भ्रष्टो विजायते। कोई मान लो आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई आपको आसक्ति रह गई तो आपको फिर से जन्म मिलेगा अच्छे परिवार में। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इस रिस्क क्यों लेना, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। पता नहीं कई बार अच्छे परिवार में भी लोग खराब हो जाते हैं। शुचि नाम श्रीमतम श्रीमत यानी अमीर मान लो आप रॉकफेलर के घर में जाते हैं पर हम कैसा लगे आपको मिस्टर रॉकफेलर के पुत्र अगले जन्म में नहीं आपको स्वयं का हारमोनियम होगा बहुत सारे पूरा साउंड सिस्टम आपका ही होगा लेकिन क्या फायदा। ज्यादा अच्छा है कि अभी जैसा भी तकलीफ आए हमको कितनी भी तकलीफ आए ये जीवन में पूर्ण बन जाना परफेक्ट बन जाना। डाई बिफोर यू डाई मरने से पहले ईगो को नष्ट कर देना और भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देना। तो प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली बोल रहे थे इस पर कि यही जीवन में पूर्णता प्राप्त करो क्योंकि एक्चुअली सब कुछ हमारी इच्छाओं के ऊपर है सब हमारे हाथ में। जैसे कोई जब आप कार चला रहे हैं आपके हाथ में आप कहां मोड़े मगर एक्चुअली मोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप हाईवे पे हैं बस स्थिर रखिए चाहे कितने स्पीड ब्रेकर्स हैं कितने तकलीफें आए लेकिन कहीं पर भी टर्न मत लीजिए। बस राधा गोपीनाथ के चरणों में ही अपने मन को लगा के रखिए फिर निश्चित ही हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते। जस्ट प्रभुपाद जी का सिंपल फॉर्मूला है हृदय को शुद्ध बनाने के लिए टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम और उनकी और गुरु की सेवा वैष्णव की सेवा। तो बैकग्राउंड के साथ मैं चैतन्य चरितामृत से शुरुआत करूंगा। मैं श्री गुरु श्रील प्रभुपाद और हमारे आदरणीय आचार्य स्पेशली वृंदावन के शरद गोस्वामी और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में वंदना करता हूं। स्पेशली आज के पवित्र दिन श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के चरणों की धूल से अपने आप को मैं सजाना चाहता हूं और आप समस्त वैष्णव की कृपा का अभिलाषी हूं। श्री माधवेंद्र पुरी की समाधि रेमुना ग्राम में है खीरचोर गोपीनाथ मंदिर के पीछे और वैष्णव के लिए एक पवित्र तीर्थ है जहां पर उनकी समाधि प्रकट है। यस्मे दातुम चोरयन् क्षीरभाण्डम् बोलिए यस्मे दातुम चोरयन् क्षीरभाण्डम् गोपीनाथ क्षीरचोराभिदो भूता श्री गोपाल प्रादुराद्विशसन यत् प्रेम्णा तं माधवेन्द्र नतोऽस्मि यस्मै दातुं चोरयन् क्षीरभाण्डम् गोपीनाथ क्षीरचोराभिदोऽभूत् श्रीगोपाल प्रादुरीसद्वशसन यत् प्रेम्णां तं माधवेन्द्र नतोऽस्मि यस्मै दातुं करता हूं जो कि प्रसिद्ध हो गए सॉरी उन माधवेन्द्रपुरी को प्रणाम करता हूं जिनको गोपीनाथ ने खीर चुराकर पात्र दिया और तब से गोपीनाथ का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। माधवेन्द्रपुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर श्री गोपाल सबके सामने साक्षात दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। परपोर्ट बाय श्रील प्रभुपाद। भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर टीका देते हैं कि ये गोपाल की जो ड्यूटी यहाँ का वर्णन किया गया है ये मूलतः कृष्ण के पुत्र के पुत्र के पुत्र वज्रनाभ ने स्थापना की थी। माधवेन्द्रपुरी ने गोपाल की ड्यूटी को खोज के निकाला, उनको गोवर्धन पर्वत पर स्थापित किया और अब ये मूर्ति नाथ द्वारा में है और वल्लभाचार्य के एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलेश्वर को सौंपा और उससे अभी उनके फॉलोअर्स उसकी देखभाल कर रहे हैं नाथ द्वारा में। और यहाँ पर मंदिर की पूजा बहुत अच्छी है, प्रभुपाद इज वेरी लग्जूरियस एंड वन हु गोज देयर, जो वहां व्यक्ति जाता है वहां पर बहुत अच्छा प्रसाद मिल सकता है थोड़ा सा पैसा देकर, पेइंग अ स्मॉल प्राइस। मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे कि नाथ द्वारा भी यात्रा जाना चाहिए है कि नहीं? कहीं गया कोई नाथ द्वारा? योर गॉड अब गया? मैं भी नहीं गया कभी नाथ द्वारा, जाना चाहिए। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अब प्रसंग ये चल रहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद नवद्वीप से पुरी जा रहे हैं। अब मैप में फिगर करी कि बंगाल है या उड़ीसा है, बंगाल में नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु हैं और वो समुद्र के किनारे का रास्ता है, एक्चुअली समुद्र किनारे नहीं दूसरे रास्ते से जा रहे हैं और वो जगन्नाथ पुरी की ओर आ रहे हैं। तो रास्ते में जो जो स्थान आ रहे हैं, जैसे रास्ते में सबसे पहले पानी हाटी आता है, उसके बाद फिर ऐसे बहुत सारे स्थान आते हैं, जलेश्वर स्टेशन है, जलेश्वर शिवलिंग है वो आता है और फिर बहुत स्टेशन बहुत जगह होने के बाद में अंत में रेमुणा नाम के गांव में पहुंचते हैं। और इसका जो वर्णन है वो यहाँ पर किया गया है, कैसे रेमुणा में क्या कथा की जाती है। सहजे विचित्र मधुर चैतन्य विहार वृंदावन दास मुखे अमृतेर धार। बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है वो अमृत की धारा के समान है और वृंदावन दास ठाकुर ने इसका वर्णन कर लिया है इसलिए मैं फिर से वर्णन नहीं करना चाहता। अब रेमुणा में पहुंच गए। रेमुणा ते गन भक्ति करे कैल प्रभु तार दर्शन। इससे पहले और एक श्लोक मैं भूल गया, पथे बड़ा बड़ा दानी विघ्न नहीं करे तास बारे कृपा करी आइल रेमुणा रे। रस्ते में बहुत सारे नदियां थे, हर नदी में टैक्स भरने वाले लोग थे, टैक्स महाप्रभु को नहीं रोका उन्होंने, टोल टैक्स। कई बार हम लोग भी जब मंदिर की गाड़ी से होते हैं ना, सातारा या कोल्हापुर जाते हैं या कोल्हापुर से मीरा जाते हैं, जयसिंहपुर पवित्र स्थान और वहां पे जाते हैं तो टोल टैक्स वाला आता है तो हम तुरंत बोलते हैं मंदिर की गाड़ी है, मंदिर की गाड़ी। तो पहले इधर उधर देखते हैं, अपने बॉस को पूछते हैं, फिर एक प्रसाद देते हैं तो तुरंत हम ये पैसा तो मेरे को नहीं मिलेगा, लड्डू मुझे मिलेगा तो इसलिए वो भी शुद्ध, पैसा भी बच गया और हरे कृष्ण सब परफेक्ट। चैतन्य महाप्रभु एक बार चैतन्य महाप्रभु जा रहे होते हैं पार्षदों के साथ और वो टैक्स वाला उनको देख के बोलते आप जा सकते हैं लेकिन ये लोग नित्यानंद जगदानंद ये आपके साथ है क्या? आप बोलते हैं मैं इनको जानता ही नहीं है। फिर आगे चले जाते हैं और वो व्यक्ति उनको रोक देता है, आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, टैक्स और जाने से पहले ही पूछ लिया था कि आपने कुछ रास्ते के लिए कुछ सामग्री या कुछ पैसे या एटीएम कार्ड कुछ लिया तो नहीं है, और सबने बोला नहीं हमने कुछ नहीं लिया, आपसे परमिशन मिलना कैसे लेते। महाप्रभु बोले बहुत अच्छा हुआ आपने नहीं लिया, अगर आपने कुछ लिया होता तो मैं आपको यहीं से वापस भेज देता, वेरी गुड दैट यू हैव नॉट टेकन एवरीथिंग। तो अब सब लोग पैसे भी नहीं टैक्स भरने के लिए, और टैक्स भरना भी है। तो थोड़ा आगे जाने के बाद वो कलेक्टर पूछने लगा, ये जो सन्यासी आपके साथ है? हाँ ये हमारे स्वामी श्री कृष्ण चैतन्य। अचानक उसके ऊपर भगवान ऐसी कृपा की, वो दौड़ते हुए गए चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्रणाम करने लगे, उनका हृदय बदल गया। ऐसा स्थान अभी भी है। एक बार हमारे कुछ दिवटी हम लोग पुरी से मायापुर बस से गए थे, बस पार्टी, बस अपने स्वयं की बस होने का फायदा, पुस्तक बांटते हुए और आगे हम लोग तमाम सब स्थान देखते हुए गए थे। एक घाट है कटक में जहाँ महाराज, कौन से राजा महाराज जाते थे, प्रताप रुद्र, तो उनकी समाधि है, गड़ागड़ी घाट बोलते हैं उसको। और ये भी एक स्थान है यमुना, अपने दामोदर दुलाल प्रभु जी साथ में थे, हम लोग बस पार्टी में गए थे वैष्णव प्रभु के वृंदावन टेम्पल की बस। तो रेमुना के बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं, बालेश्वर नामक रेलवे स्टेशन से 5 मील पश्चिम की ओर रेमुना नाम का गांव है। इस गांव में भी आज खीरचोर गोपीनाथ का मंदिर है, और मंदिर के भीतर आज भी श्यामानंद गोस्वामी के प्रमुख शिष्य रसिनान रसिकांत प्रभु की समाधि है, और पीछे माधवेन्द्रपुरी और पवित्र स्थान है। कितने लोग गए हैं रेमुना, हाथ ऊपर करिए। रेमुना नहीं गया फिर आपका गोपीनाथ में रहना बेकार हो गया, कल जाना। हाँ? हाँ? नहीं नहीं जाना चाहिए, निगड़ी भी गोपीनाथ का ही ब्रांच है, गोपीनाथ से अलग नहीं, जिसको दिव्य दृष्टि होती है वो देख सकते हैं। एक्चुअली बलदेव जी को खीर खिलाइए तो फिर उनको लगेगा कि गोपीनाथ में पानी है। सबको जाना चाहिए। कितने लोग गए हाथ ऊपर करिए। बहुत सुंदर खीर मिलता है वहां पे, 10 रुपए में इतना बढ़िया खीर, बहुत टेस्टी, इतना टेस्ट होता है वो वहां जाके मालूम पड़ता है। एक बार मैं लेके आया था निगड़ी भक्तों के लिए, लेकिन रास्ते में वो थोड़ा ये हो जाता है, टेस्ट बदल जाता है, लेकिन वहाँ ओरिजिनल खाना चाहिए। बहुत ब्रेकफास्ट खीर, लंच खीर और डिनर खीर। मेरे को यह स्थान हमेशा याद रहता है क्योंकि हम सब लोग डिवोटीज पिछली बार कुछ स्टूडेंट्स को ले गया था ये संगम नेर बेस के, और उसके बाद में फिर संगम नेर बेस के थे ना, यस, उसके बाद में फिर हम लोग प्रसाद खा के आराम से बैठे थे, और एक काला बिच्छू आया मेरे को काट दिया था, तब मेरे को कृष्ण मुकुंद हरि में बोलने लगा, और बाद में बहुत दर्द हुआ, ऐसा लगता है कोई सुई टोच रहा है बहुत देर तक, ऐसे इंजेक्शन है ना अंदर ही घुस गया, ऐसे पुकार रहा था कृष्ण मुकुंद पैर में था, और वो तुरंत भाग गया। लेकिन मेरे को हमेशा याद रहेगा क्योंकि भगवान बोलते हैं देखो मैं ही अमृत दे रहा हूँ, मैं ही जहर दे रहा हूँ, आपको समान रहना चाहिए, है कि नहीं। गोपीनाथ तो वो बिच्छू के भी हृदय में वो बोलते हैं जाओ इसका पाप दूर करो जल्दी शुद्ध हो जाए। भगवान जल्दी शुद्ध करते अपने, इस पर विशेष कृपा करते हैं, सब पे सब आपके काटे नहीं लेकिन कृपा सब पे करते हैं। किसी को काटते हैं तो भौतिक शरीर के तकलीफ से, किसी को मानसिक से, किसी को जॉब नहीं देके, किसी को पारिवारिक दुख से। बाद में एक डिवोटी जो है वो पुजारी उसको पकड़ के लेके आए बिच्छू को ऐसे बांध के, वहां के पुजारी लोग बोलते कई लोगों को काटते हो, हमने उसको प्रणाम किया, उसको 4 बार हरे कृष्ण मंत्र सुना के फिर छोड़ दिया प्रार्थना की अगला जन्म उसको राधा गोपीनाथ मंदिर में मिले। ये वाले गोपीनाथ ब्रह्मचारी आश्रम में। हमेशा याद रहता है वो इंसिडेंट है। एक्चुअली प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। अभी एक बिच्छू फिर 2 बिच्छू, ये मृत्यु के समय कितने बिच्छू होते हैं गोपतिपुर? 40,000 कैसे हो गए? जितने लोग बैठे उससे ज्यादा बिच्छू, इमेजिन करो सब लोग जो बैठे आपको मार रहे हैं और 40,000। सिर्फ भक्ति तीर्थ महाराज जो बहुत एलिवेटेड भक्त हैं वही इसको इजीली ले सकते हैं। इजी नहीं है, मृत्यु का टेस्ट ये है, इजी नहीं है। एनीवे भगवान ने गोपीनाथ का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद भगवान प्रणाम किया, और फिर भगवान की जो गले की माला है वो गिर पड़ी, और वो गिर जाने के बाद पुजारी ने उनको एक्चुअली जब उन्होंने प्रणाम किया तो अपने आप महाप्रभु के गले में गिर पड़ी वो माला, तो प्रणाम कर रहे थे और वो माला गिर गई। बहुत सुंदर ड्यूटी है, गोपीनाथ बीच में साइड में मदन मोहन भी, गोविंद देव भी है। अगर आप सुबह के समय जाओगे तो अभिषेक हो रहा होता है, तो अभिषेक के समय वो निकलते हैं। पांडुरंग प्रभु याद है आपको, हम लोग गए थे खीरचोर गोपीनाथ, हाँ इमाम पेपर मिल से एक जगह है, हमारे जो क्या नाम है बंसी गोपाल प्रभु जी के कंपनी, तो वहां पर हम लोग ठहरे थे और याद है दर्शन, मॉर्निंग का दर्शन हमने किया था अभिषेक का पहले, तो बहुत अच्छा था सुबह के समय जाओ तो। और अभिषेक करते हुए वहां अलाउ करते हैं अंदर से दर्शन दे करते देखने का, डीटीएस का बहुत स्पेशल वीक है एक्चुअली। ये डीटीएस जो है भगवान राम ने बनाए थे। एक बार जब वो वहां से जा रहे थे रामचंद्र जी और सीता महारानी, तो उस समय अचानक भगवान राम बोलने लगे। सीता महारानी ने पूछा कि एक्चुअली ये स्थान बहुत रमणीय था, इसका नाम रेमुना हो गया। उन्होंने पूछा कि ये क्या, ये आपका अगला अवतार कैसा होगा। तब भगवान राम ने एक शिला ली, एक पत्थर, और अपने धनुष बाण से एक ऐसे आकार बनाया कृष्ण की डीटी, और वही डीटी उन्होंने सीता रानी को दिया। फिर सीता महारानी ने बहुत साल पूजा की, उसके बाद वही डीटी माधवेंद्रपुरी के फॉलोअर्स से आकर। तो डीटी भगवान के एक अवतार ने दूसरे अवतार की डीटी बनाई है, इसलिए बहुत बहुत स्पेशल है। उडुपी में भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी डीटी बनाई, वो भी बहुत स्पेशल। या मायापुर में चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपनी मूर्ति बना के विष्णु प्रिया को दी, तो बहुत बहुत ही स्पेशल। या एक बार और कौन सा, नित्यानंद प्रभु ने बांका राय डीटी दी को मिली थी, मुरलीधर डीटी दी, जो स्पेशल स्वयं वो मूर्ति होते हैं या भगवान के द्वारा बनाए गए। चूड़ा पाया महाप्रभु आनंदित मन, बहु नृत गीत कैला लय भक्त गण। महाप्रभु बड़े आनंद से कीर्तन करने लगे। जब वो कीर्तन कर रहे थे तो सारे पुजारी देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि महाप्रभु अचानक आ गए। ऐसे नहीं कि किसी ने बताया कि अभी कोई बड़े सीनियर डिवोटी आ रहे हैं तैयारी करो, ऐसे आ गए और ड्यूटी के सामने डांस करने लगे, कीर्तन करने लगे। और तब महाप्रभु ने नौकर से पूछा कि आपके यहाँ पर भगवान को क्या क्या भोग लगते हैं। तो हम लोग जनरली पूछते हैं क्या क्या भोग लगता है, मतलब क्या क्या मुझे क्या मिलेगा बाद में, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं पूछ रहे थे। इनफैक्ट एक और चीज है, फ्यूचर में आप जाएंगे ना तो प्रसाद जो बहुत जो ड्यूटीज को डायरेक्ट जो प्लेट ड्यूटीज अर्पण किया वही प्लेट आपको मिलता है 12 रुपए में। यानी अगर आप बोलेंगे मुझे 15 लोगों का प्रसाद चाहिए तो 15 प्लेट ड्यूटी के सामने रखते हैं, चावल सब्जी थोड़ा दाल, और फिर बाद में वही प्लेट आपको मिलता है। भगवान की कृपा है, बहुत बहुत अच्छे सिस्टम है वहां पे। और तो महाप्रभु नौकरों से पूछ रहे थे कि भगवान की सेवा में क्या क्या अर्पण होता है, तो उन्होंने सब आइटम्स बताए। फिर किसी ने बताया कि यहाँ पर एक आइटम अर्पण होता है, इसका नाम है खीर, और यहाँ की खीर बहुत प्रसिद्ध है। महाप्रसाद खीर लोभे रहिला प्रभु तथा पूर्वे ईश्वर पुरी तारे कोई अच्छे कथा। और भगवान वहां क्यों रुक गए गोपीनाथ का खीर खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ईश्वरपुरी से सुना था। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो मैंने अपने गुरु ईश्वरपुरी से सुना था वो कहानी में बताने जा रहा हूं। वो नहीं बोल रहे कि मैंने देखा था या मेरे अनुसार ऐसा हुआ था। पूरी चैतन्य चरितामृत लिखी गई खाली सुनने से, कोई भी लीला देखी नहीं थी उन्होंने, पूरा सुनने से। अगर अटेंटिव सुनते हैं तो बहुत एडवांसमेंट भी कर सकते हैं और दूसरों को भी दोहरा सकते। खीर चोर गोपीनाथ प्रसिद्ध तारा नाम भक्तगण कहे प्रभु चैत्य आख्यान। ये भगवान का विग्रह सब जगह पे प्रसिद्ध हो गया खीर चोर गोपीनाथ के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु ये कहानी सबको बताते हैं कैसे नाम हुआ पूरा। ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप मेमोराइज करिए इसको। पूर्वे माधव पूरी लागे छीर कैल छुरी, माधवी नहीं सॉरी, पूर्वे माधव पुरी लागी छीर कैल छुरी, अतएव नाम हैल खीर चोर हरी। क्योंकि भगवान ने खीर का बर्तन चुराया इसलिए उनका नाम हो गया खीर चोर। हाँ, यहाँ पे खीर चोर हरी, खीर चोर हरी। पूर्वे श्री माधव पुरी आयल वृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरी गोवर्धन। माधवेंद्रपुरी आए थे वृंदावन में और घूमते घूमते वो गोवर्धन पहुंच गए, कोने में ना गोवर्धन गोवर्धन पहुंच गए। और फिर प्रेमे मत्ते नाही तारा रात्रि दिन अज्ञान, क्षणे उठे क्षणे पड़े नाही स्थान स्थान स्थान। प्रेम मत में थे वो, कभी उठते कभी गिर जाते, उनको पता ही नहीं था वो कहाँ पर है, हमेशा गा रहे थे हरी हरी। शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंड आसी, शैल परिक्रमा, शैल परिक्रमा यानी शैल किसको बोलते हैं, पर्वत को भी बोलते हैं पर्वत। तो गिरि गोवर्धन की परिक्रमा की और कहाँ पहुंच गए, गोविंद कुंड, वो भी यहीं पे है ना कहीं, उनमें से एक है ना गोविंद कुंड। गोविंद कुंड नहीं है, नहीं यहाँ पे। अच्छा, नहीं गोविंद कुंड था वो महाराज के, गोविंद कुंड बहुत सुंदर स्थान है। स्नान करी वृक्ष तले आचे सन्निधि बसी, स्नान करके वो पेड़ के नीचे बैठ गए। आई विल नीड इट फॉर समथिंग। अच्छा ठीक है, अंदर रखिए क्योंकि कोई को ट्रांसलेशन ठीक है। एक्चुअली आप रखिए, मैं मांग लूंगा क्योंकि उससे आपका ध्यान अच्छा होगा। कई बार गोपाल बालक एक दूध भांडा लैया, जब 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 माधवेंद्रपुरी आए थे उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर जप कर रहे थे, और एक छोटा बालक आया जिसका नाम गोपाल, नाम नहीं बताया, अज्ञात ग्वाल बाल, अननोन ग्वाल बाल, आप सब जानते हैं कौन है, आपके हृदय में छिपे हुए। तो वो ग्वाल बाल आए दूध का बर्तन लेकर माधवेंद्रपुरी के सामने हंसते हुए बोले, पुरी यही दूध लैया, तुम्हें पान कर, मैं आपके लिए दूध लाया हूं, पान कर यानी पियो। मागी केनो ना खाए किवा करे ध्यान, अब मांग के क्यों नहीं खाते, हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं, हम चुरा के भी खाते हैं। आप मांग के क्यों नहीं खाते, कोणा किस पर ध्यान कर रहे हो। बालक ए रह सौंदर्य पूरी रह हई रह संतोष, भगवान के सुंदरता को देख के उसको इतनी खुशी हुई। तहारा मधुरे वाक्य गेला भूख शोष, और उनके इतने मधुर वाक्य थे कि सब भूख भूल गए, प्यास भूल गए, तो मग्न थे माधवेंद्र पूरी, मग्न थे बालक को देख के। तो पूरी पूरी कहे, पूरी जगह माधवेंद्र पूरी ने जवाब नहीं दिया उनके प्रश्न का, लेकिन उन्होंने भगवान से पूछा, पूरी कहे के तुम्ही कहा तुम्हारा वास, के मते जानीला मी करी उपवास। उन्होंने पूछा, अरे आपका घर कहाँ पे है, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं उपवास कर रहा हूँ। बालक कहे गोपामी यही ग्राम है वासी, हमारे ग्राम में ते कहो न रहे उपवासी, हमें यही रहता हूँ गोवर्धन में। गिरिराज महाराज की जय, गिरि गोवर्धन की जय। हमारे ग्राम आते नहीं रहे उपवास, मेरे ग्राम में कोई उपवास नहीं रहता। हम लोग गिरिराज नवंबर में गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए थे, छोटी परिक्रमा हिंदी परिक्रमा, तो उसमें हम लोग, ये क्या नाम है उसका, कौन से सन्यासी थे वो, धनुधर महाराज थोड़ा लेक्चर दे रहे थे, अचानक लेक्चर दे रहे थे, पीछे से बहुत सारे सफेद गाय जाने लगे और कोई ग्वाला भी नहीं था। तब उन्होंने बताया कि आज सुबह गोपी परानंदन प्रभु ने लेक्चर में बताया कि अगर बहुत सारे गाय जा रहे हैं गोवर्धन से और अगर कोई ग्वाला नहीं दिखे, मतलब कृष्ण पर्सनली वहां पे, और हम लोग वहां पे आप थे ना, कृष्ण वहीं पर थे, और कौन था उस दिन यात्रा में, आप लोग थे, पांडुरंग प्रभु थे। तो हिंदी यात्रा की स्पेशलिटी है कृष्ण पर्सनली आते, तो महाराज कहता अच्छा कृष्ण गुरु के रूप में पर्सनली आते हैं, पर्सनली। तो हम लोग उस समय यात्रा की जब कृष्ण पर्सनली वहां पे थे। अब भगवान हमेशा पर्सनली है ड्यूटी के रूप में, जब ड्यूटी को स्पर्श करे वही पर्सनली है ना, ये सब क्या एडजस्ट करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। अगर यात्रा में जाने के मिले तो बहुत अच्छा, वृंदावन नाम अच्छा, नहीं तो गोपीनाथ मंदिर ही वृंदावन। अगर अच्छा प्रसाद मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्या, एक्चुअली प्रसाद तो एब्सोल्यूट होता है, वो कुछ भी अच्छा, उपवास करना वो भी अच्छा। कोई डिवोटी बहुत मीठा बोले तो डिवोटी कितना अच्छा, मधुर बोल रहे, कोई डिवोटी कड़वा बोले तो ये एक्चुअली मुझे शुद्ध बना रहे, तो ऐसे सोचना चाहिए। तो हर समय जो है भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, फिर हम बैक टू गॉड जाने के काबिल बन जाते, बस तत्ते अनुकंपा समीक्षा, नो कंप्लेंट। बालक कहे गोपामी, मैं यहाँ ग्वाला हूँ, हमारे ग्राम थे के न रहे। इनफैक्ट एक बार और भी हमने परिक्रमा की उसके बाद में, जो आप सब लोग चले गए उसके बाद में राधानाथ महाराज बिरला फैमिली को लेके गए थे, तो उसमें भी मैं गया था साथ में, तो उसमें भी क्या हुआ है, अचानक कुछ गाय जा रहे थे, मैंने महाराज को बोला देखो गाय जा रहे, तो महाराज थोड़ी देर तक देखते ही रहे, और फिर उन्होंने लेक्चर में बताया कि अगर गिरिराज के पास से गाय गुजरते हुए देखे तो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता, क्योंकि वो स्थान है एक्चुअली, कृष्ण गाय चराते हैं वहां पर। तो क्यों अन्न मागी खाए क्यों दुग्धार करे, यहाँ कोई व्यक्ति होता है जो अन्न खाता है, कोई दूध पीता है, लेकिन जो कुछ नहीं मांगता उसके लिए मैं लेके आता हूँ। अजगर वृत्ति ग्यारहवें स्कंद में इसका वर्णन है कि लेट जाना, वे प्रसाद आ जाए तो ठीक खा लेना, अजगर वृत्ति। इसको सब लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी चीज है अगर बहुत एडवांस ड्यूटी के लिए। अब भगवान दे ही देते हैं कहीं ना कहीं से, जैसे माधवेंद्रपुरी को अयाचक वृत्ति आमी दिया। एक है कि जैसे अपने लिए घर में बैठ के प्रसाद बनाना खुद के लिए, वो एक लेवल है भक्ति का, ऑफरिंग करना। फिर दूसरा है कि मंदिर में भगवान को भोग लग रहा है तो प्रसाद के समय प्रसाद खाना, ये सेकेंड लेवल है। उससे हायर लेवल है कि भिक्षा मांग के सन्यासी की तरह रहना, घर घर में भीख मांगना, जो मिल जाए थोड़ा थोड़ा लेना सबसे और टेस्ट कर देखना। और उससे भी ज्यादा हायर लेवल है अयाचक वृत्ति, अगर कुछ मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिल जाए तो हरे कृष्ण। जल नीते स्त्रीगण तोमा देखा गेली, स्त्री शब्द दुग्ध दिए अमारा पठाईला। अब पानी लेने के लिए कुछ स्त्री आए थे कुएं से, उन्होंने देखा कि आप यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने आकर मुझे बताया और वो बालक बोला अभी मुझे जाना है, मुझे बहुत सारे गाय हैं उनका ख्याल रखना है, दूध निकालने के लिए जाना है और बहुत जल्दी मैं लौट के आऊंगा और तब आप बर्तन मुझे वापस करना। वो तो चले गए। माधवेंद्र पूरी सोच रहे थे मन में, कौन है ये बालक, इतना सुंदर बालक। दुग्ध पान करी भांडा धोया रखीला, बाट देखे से बालक पुनः न आईला। तो दूध पी लिया, इंतजार कर रहे थे कब आएगा वो बालक, कब आएगा, लेकिन वापस आया ही नहीं। बसी नाम लय पूरी निद्रा नहीं है, शेष रात्रि तंद्रा है ले बारे वृत्ति लय। पूरे समय रात लेते रात में हरे कृष्ण हरे राम जप कर रहे थे और पूरी रात्रि पूरी हो गई और थोड़ी सी इनको नींद आई और तब उनको नींद में क्या दिखाई पड़ा, हाँ एक स्वप्न दिखाई पड़ा। स्वप्न देखे ते बालक सम्मुख आसिया, एक कुंज लय गेला हाथे ते धरिया। माधवेंद्र पुरी का हाथ लेकर एक कुंज में गए और बोले चलो कुंज देखा ही थे, कहे आमी यही कुंज रहे, मैं कुंज में रह रहा हूँ। शीत वृष्टि वात अग्नि महा दुख पाए, कभी बहुत ठंडी कभी बहुत गर्मी, कभी हवा चल रही है, आप मुझे मदद करो। डीटीस बोल रहे हैं, डीटीस को ऐसे ड्रेस करना जिस तरह से यहाँ भी डीटीस को वार्म क्लोथिंग पहनाते हैं ना गर्मी के मौसम, सर्दी के मौसम में स्वेटर वगैरह शॉल, या क्योंकि कोड़ी मोट में देखे शॉल स्वेटर भी पहनाते हैं भगवान को पूरा ऐसे, जैसे कल लोकल डीटी एकदम अच्छा स्वेटर भगवान को पहनाना चाहिए। आपके गौरव को पहनाते हैं कि नहीं, आपके पहनाते हैं, आप नहीं पहने तो कोई बात नहीं, उनको पहनाना चाहिए, डीओटी को सोचना चाहिए, डीटी को मैं खुश करूं। महाराज प्रभुपाद बोलते थे अगर आप डीटी को अच्छा ड्रेसिंग करोगे तो आप अपने आप को ड्रेसिंग करने की इच्छा, मतलब सजाने की इच्छा नष्ट हो जाएगी। डीटी को अच्छा अच्छा भोग खिलाओगे तो कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा नष्ट हो जाएगी, प्लस महाप्रसाद भी मिल जाएगा, होगा क्या। डीटी से पर्सनल रेसिप्रोकेशन होता है, हर डीटी व्यक्ति है, अगर आपको व्यक्ति मानोगे देखोगे आप ये कहानी में कैसे भगवान दिखा। भगवान बोले चलो 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 मेरे को निकालो यहाँ से, बहुत ठंडी है, बरसात है और मुझे भूख लग रही है, सब गांव के लोगों को लेकर आओ और मुझे पर्वत के ऊपर एक अच्छी जगह पे स्थापना करो, मेरे लिए मंदिर बनाओ और मेरे को अच्छे से स्नान कराओ, बहुत दिनों से तुम्हारे देर कर रहा हूँ, माधवेंद्र कब आएंगे, माधवेंद्र पुरी कब आएंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे जब कोई बड़ी भगवान को ऑफरिंग करते हैं तो भगवान को भूख लगी होती है कि ये समय अभी अभी कभी ऑफरिंग आए, भगवान एक व्यक्ति है। तो तुम्हारे प्रेम वश करी सेवा अंगीकार, मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है, इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारी, वज्रेर स्थापित आमी इहार अधिकारी। मेरा नाम है गोपाल और मैं गोवर्धन पर्वत का धारण करने वाला हूँ, मेरी स्थापना वज्र ने की है, मैं यहाँ का अधिकारी। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तब लोगों ने डर के मारे मुझे जमीन के अंदर छिपा दिया और इस आक्रमण के कारण सब लोग भाग गए, हमें को छिपा दिया और भूल गए। अब कई साल हो गए मैं यहीं पे हूँ, जब से पुजारी चला गया मैं यहीं पर हूँ। अच्छा वो तुम आए, मेरे को निकालो ऐसे कुंज को दिखा के भगवान चले गए। माधवेंद्र पुरी जग गए, अब भी जग जाओ सब लोग, हरी हरी। माधवेंद्र पुरी के फॉलोअर्स भी जग गए। श्री कृष्ण के देखी नो हुई, फिर वो सबको बोले अरे, मन में सोचने लगे इसका मतलब वो बालक जो आया था वो साक्षात कृष्ण था, वो स्वयं कृष्ण था, मैं पहचान नहीं सका। वो जमीन पर गिर पड़े, कुछ देर तक रोते रहे, उसके बाद गोपाल की आज्ञा पूरी करने के लिए अपने चित्त को स्थिर किया। एक भक्त को अपने एक्सेस से ज्यादा इंटरेस्ट होता है भगवान की सेवा में, सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसकी एक्सटेसी का अनुभव करने। वो सबको साथ में लेकर गए और बोले, इस गांव के स्वामी जिनका नाम है गोवर्धन धारी कृष्ण झाड़ियों में, चलो चलो हम सब जाएंगे। बहुत घनी जंगल है इसलिए सब लोग हाथ में कुल्हाड़ी और फावड़ा और सब अस्त्रों को लेकर चलो। सब लोग बड़े खुशी से निकल पड़े और कुंज को काटने लगे, रास्ता सब साफ किया और जंगल में गए और फिर भगवान की ड्यूटी को निकाला। गोपाल जी जो दादा गोपीनाथ मंदिर में आपने देखे, गोपाल जी वो सेम वही रूप है। गोपाल जी गिरिराज बाएं हाथ से पर्वत धारण कर रहे, कृष्ण दिखाते हैं कि मैं इतना महान हूं। जैसे कोई बोलते ना कि ये क्या, इसको हराना क्या, मेरे बाएं हाथ का खेल। इसलिए भगवान बोलते हैं पर्वत धारण करना मेरे बाएं उंगली का खेल। देखिए ब्रजवासी बोलते हैं कृष्ण ने धारण किया, ये राधा रानी की आंखों से पलकों से धारण हुआ। अब ब्रजवासी सब अपनी लकड़ी को भी लगा के रखते हैं जस्ट बाई चांस कृष्ण के हाथ से गिर नहीं जाए। और कृष्ण एक क्षण अंगुली थोड़ा हटाते हैं तो सब थर थर कांपने लग जाते हैं। तो गोवर्धन लीला बहुत सिग्निफिकेंट है वैष्णवों के लिए, क्योंकि ये दिखाती है कि हम कृष्ण के ऊपर भरोसे हैं, कृष्ण के ऊपर है पूर्ण रूप से। कृष्ण का नाम और गोवर्धन पर्वत में कोई अंतर नहीं है। जहां कृष्ण का नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, समझिए कि गिरिराज गोवर्धन रक्षा कर रहे। और डिवोटीज का क्या कर्तव्य है प्रीचर्स का, कि गोवर्धन की सीमाओं को बढ़ाते जाना। गोवर्धन पहले ब्रज में है, प्रभुपाद जी उसको ब्रज से अमेरिका न्यूयॉर्क ले गए, फिर सैन फ्रांसिस्को ले गए, फिर लंदन में यूरोप में भेजा, फिर बंबई में भेजा, फिर राधा गोपीनाथ, फिर निगड़ी, सब जगह पे ये पर्वत की सीमाओं को और बढ़ाते रहने, सबको रक्षा मिले। ये सब लोग बहुत त्रस्त है माया के बरसात से, इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम शरणम ब्रज। और हमारा कर्तव्य है कि दूसरों को कृष्ण की शरण मिले। तो एनीवे तो भगवान उनको भगवान को निकालने के बाद अर्चा विग्रह को साफ किया। और कोई बोला ये तो बहुत भारी है, बहुत हैवी ड्यूटी, कौन उठाएगा इसका। तब कुछ बड़े बड़े तगड़े लोग थे, राधा द्यूति श्री चैतन्य वो टाइप के लोग, बड़े बड़े लोगों को वहां बुलाया गया, लिखा है वहां पे मजबूत लोग, महा महा बलिष्ठ लोग एकत्र करीला पर्वत ऊपरी गेला पूरी ठाकुर लइया। तो उनको लेकर गए, यहाँ पे उतने बलिष्ठ नहीं है, मैं भी सुधीर को भी कर लिया, आपके पिताजी होते तो और भी अच्छे हो। देख उनके पास कोई पैसा नहीं था मंदिर बनाने के लिए, उन्होंने क्या किया, एक पत्थर को ही मंदिर बना दिया, एक पत्थर को ही ऑल्टर बना दिया, पीछे और एक पत्थर रख दिया, दो पत्थर, वही सिंहासन बन गया, एक दूसरा पत्थर के विग्रह के लिए आश्रय बन गया। गांव के सारे लोग फिर गोविंद कुंड से पानी ले आए और 9 मटके पानी से उनको स्नान कराने लगे, उसको अच्छी तरह से स्नान कराया। एक्चुअली 9 नहीं, बाद में लिखा है 900 मटके, 9 घड़े लिए लेकिन 100 बार उन्होंने भर के 900 मटके स्नान कराया। और कोई बिगुल बजा रहा था, कोई ढोल बजा रहा था, और स्त्रियां गीत गा रहे थे, केहो गाए केहो नाचे महोत्सव हैला, ददी दुग्ध घृत आई लव ग्रामे यत छिला। गांव का सारा दूध दही घी सब उत्सव लेकर आए, सब 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 दूध सब भगवान को अर्पण कर दिया, कलेक्शन भी नहीं किया, ऐसे दे दिया। और भोग सामग्री पाइला संदेश आदि यत नाना उपहार ताहे कहिते पारी कर, मैं बता नहीं सकता इतने प्रकार के व्यंजन और मिठाइयां भगवान को भोग लगाए। ठीक ऐसे जैसे जब भगवान की गोवर्धन पूजा हुई थी 5000 साल पहले, जो ऑफरिंग किए थे सब ऑफरिंग किए, गांव वाले प्रचुर मात्रा में तुलसी दल ले आए, फल ले आए, और फिर स्वयं माधवेंद्रपुरी ने अभिषेक शुरू किया। यहां बताया कि हरि भक्ति विलास से अर्चा विग्रह को कैसे दूध से दही से स्नान कराना चाहिए, फिर शंख घंटियां बजाने चाहिए और बोलना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय चिंतामणि प्रकर्ष कल्प वृक्ष वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तम्, ये सब श्लोक गाने चाहिए। तो स्नान करने के बाद सारा मंगल दूर हो गया। फिर भगवान को तेल से श्रृंगार किया गया, तेल से चिक्कन बनाया गया, चिक्कन ग्लॉसी प्रचुर मात्रा में तेल लगाया गया भगवान को। पंच गव्य पंचामृत स्नान कराइया महास्नान कराइला शत घट दिया। तो पंच गव्य यानी 5 गाय से जती जाती है, गोमूत्र गोबर दूध दही घी से स्नान कराया। उसके बाद पंचामृत यानी दूध दही घी शहद और चीनी, तीन तो कॉमन है, दूध दही घी, कितना इम्पोर्टेंट है दूध का बिजनेस, देखिए भगवान की सब सेवा में। और इस व्यंजन के अधिकांश अवयव गाय से ही प्राप्त होते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं खाली स्वादिष्ट बनाने के लिए चीनी और शहद मिक्स किया जाता है। तो गाय कितने महत्वपूर्ण जानवर है हरी हरी, क्योंकि गाय से जो चीजें आती है भगवान की सेवा में डायरेक्टली उपयोग होते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप जानना चाहते हो कि समाज कितना आगे बढ़ रहा है वो कैसे जान सकते हो, गोरक्षा 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 कितनी अच्छी हो रही है, जैसे कितने अच्छे कंप्यूटर्स आ रहे हैं, कितने टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, मोबाइल्स आ रहे हैं, गाय की रक्षा मतलब क्या हुआ। और एक्चुअली लोग सोचते हैं कि हमारे पैसे की कमी है, लेकिन पैसे की कमी नहीं है। अच्छा 10 साल पहले कोई मोबाइल नहीं थे, है ना, 10 साल पहले थे मोबाइल्स नहीं थे, अभी देखो मोबाइल तो झोपड़ी में लोग रहते हैं उनके पास ही मोबाइल रहते है कि नहीं। जो कहीं मैं देखा, मैंने एक बार देखा कुली के पास भी मोबाइल था, सबके पास। और मोबाइल मतलब कम से कम न केवल मशीन का खर्चा बल्कि हर महीने कम से कम 200-300 रुपए डोनेशन देना होता है, राइट। आपके यहाँ पे कितने लोग मोबाइल है साइन अप, हर घर में एक है ऑलमोस्ट, नहीं कॉन्ग्रीगेशन में सब ड्यूटीज के पास ऑलमोस्ट हो गए, ब्रह्मचारी भी पहले मेरा भी ऑफ किया नहीं अभी तक, वो भी बलदेव भी है मोबाइल, बलदेव प्रभु का मोबाइल है, गौरंग प्रभु के पास है, और कितने सब एटलीस्ट 10-15 ब्रह्मचारियों के पास है। तो इसका मैं निंदा नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलने का मतलब ये है कि अगर प्रायोरिटी मालूम हो तो वही पैसे जो कम्युनिकेशन में लगा रहे हैं वो गौ रक्षा में लगाया जा सकता है, क्योंकि उसके बिना भी लोग 96 में भी लोग जीवन जीवित रहते थे, राइट। और उसमें भी काम चलता था, ऐसे नहीं कि लोग खो जाते थे कि मोबाइल नहीं है तो कैसे पता चलेगा कोई कहाँ पर है, नहीं। और आज से 100 साल पहले तो टेलीफोन ही नहीं था, टेलीफोन इंडस्ट्री कितना साल, 100 साल 200 साल सब, तब भी लोग चलते थे खुश रहते थे। बल्कि आज मोबाइल है, जैसे समझो मेरे को कहीं जाना है, समझो मुझे थोड़ा कहीं बाहर जाना है काम छोड़ के, काम से थोड़ा सा खिसक के कोई काम पे जाना है तो मैं जा सकता था, तो ढूंढे लोग कहाँ आ रहे, कहीं गया होगा चाय पीने दूध पीने, लेकिन मोबाइल है तुरंत कॉल करके कहाँ हो गए रस्सी के जैसे, जैसे गाय को रस्सी बांधते ना चला गया। दादा भी नौकरी मुझे बता रहे थे वो क्या करते हैं, मोबाइल रखते ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल रखने से ऑफकोर्स हमें अपना ड्यूटीज करने चाहिए, लेकिन एक एक गले की रस्सी जैसे रहता है, कहीं पर भी व्यक्ति को खींचा जा सकता है। और कई बार लोग दो दो तीन तीन मोबाइल्स रखते हैं, एक रिलायंस एक BSNL एक हो, जिससे अगर एक रस्सी से नहीं खींचा जाता दो रस्सी, और लोग सोचते एडवांसमेंट, लोगों को खुशी होती है कि मेरे पास मोबाइल आ गया है, तो ये सब इंडस्ट्री एडवांसमेंट नहीं है। और सब टेक्नोलॉजी का यूज किसमें होता है, यहाँ पे देहू में आप जाओ तो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है, क्या बनाते हैं वहाँ, एक्सप्लोसिव बनाते हैं। एक बार श्री चैतन्य प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रभु वहां गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राधा विनोद प्रभु, और उनके एक पहचान को भी व्यक्ति था, उनको अंदर लेकर गया जहाँ पे सब बनाए जाते हैं, किसी को अलाउड नहीं होता वहां पे, तो भयानक भयानक एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं, जैसे बिल्डिंग से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाने के लिए, इसमें मारने के लिए, तो ये सब समझो जितना भी जो देहू में फैक्ट्री बन रहे हैं वो उतना एक साल का खर्चा हमें दें तो हम लोग एक साल में मंदिर बना सकते हैं, लेकिन नहीं, एक साल में कम से कम 1-2 करोड़ तो होता ही होगा खर्चा, ज्यादा ही होता होगा, नहीं। वो जो बिल्डिंग तोड़ने के लिए खर्च कर रहे हैं वो हमें दे दें तो हम मंदिर बना सकते हैं ना। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कमी पैसे की नहीं है, कमी है कि पैसे गलत उपयोग हो रहा है, लोगों के पास पैसे हैं, शक्ति है, बुद्धि है, सब गलत उपयोग है। मोबाइल की इंडस्ट्री बनाने के लिए कितने इंटेलिजेंस लगता है, ये भी किसी ने सोचा ही नहीं होगा पहले 10-20 साल पहले, इतने छोटे से चिप में सब कुछ हो सकता। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं गोरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे भागवत के परपर्ट्स में बोलते हैं। फिर उसके बाद डीटीज को गोमूत्र सॉरी पंचगव्य पंचामृत स्नान कराने के बाद, फिर तेल लगाने के बाद, फिर उसको फिर से स्नान कराया, और उसके बाद भगवान को वस्त्र पहनाए गए, फिर चंदन लगाया गया, फिर तुलसी माला पहनाई गई, फिर उसके बाद धूप अर्पण किया गया, फिर दीप अर्पण किया गया, फिर भोग लगाया गया, और फिर अलग अलग भोग लगाए उनको सुंदर सुंदर पात्रों में, फिर जल दिया गया, फिर पान अर्पण किया गया, और फिर बाद में भगवान को दंडवत प्रणाम किया गया। जब गांव वालों को पता चला कि यहाँ पे बड़ा फेस्टिवल हो रहा है तो सब लोग आए वहां पर, सब अपने अपने घरों से कोई चावल लेकर आया, कोई आटा लेकर आया, और इतनी मात्रा में थी कि पर्वत भर गया, इतने सारे लोग इतने आइटम्स लेकर आए, और भगवान को कोई चावल, कोई दाल, कोई आटा और सब पकाकर भगवान को अर्पण करने लगे। 10 ब्राह्मण खाली अन्न बनाने में लगे थे, यानी चावल बनाने में। फिर 5 ब्राह्मण थे, उनका सब्जी बनाने की सेवा था। यहाँ पर हमारे एक कृष्ण है, भगवान कृष्ण और कृष्ण दास सब कर लेते हैं, कभी कभी अर्जुन आते हैं मदद करने के लिए। तो पता चलता है जेन्युइन टेम्पल है ना, कृष्ण अर्जुन भीम सब किचन है। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट अर्जुन भीम है, ये सब ब्रह्मचारी हैं। फिर 5 ब्राह्मणों ने सूखी सब्जी और रसेदार सब्जी, मतलब वाटरी सब्जी और सूखी सब्जी बनाई। मतलब जा रहे, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं इसको? सुन रहे हैं? बहुत स्पेशल डिवोटी है कृष्णा प्रभु जी। सारे तरकारियां जंगल से एकत्र किए गए, उसके बाद पत्ते, जड़ और फलों से तैयारी की गई। फिर किसी ने दाल पीस के बड़ा बनाया, बड़ा 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 और बड़ी। क्या लिखा इंग्लिश में, क्या लिखा है इसका? बड़ा बड़ी 70 वर्ष, बड़ा बड़ी ना, बड़ा और बड़ी। बड़ा तो होता है, बड़ी मतलब क्या? बड़ी मिसेस बड़ा, मिसेस बड़ा। 5-7 लोगों ने मिलके फिर रोटियां बनाई, रोटी बनाने के लिए 5 लोग। फिर पर्याप्त घी से चुपड़ दिया उसको, फर्स्ट क्लास घी लगाया गया। फिर सारे सब्जियां, दाल और भात घी से भरा हुआ था, चावल के बीच में हरा हरा घी ऐसे तैरता हुआ, फर्स्ट क्लास, देखने में भी आनंद आया। सारा पका हुआ चावल पलश के पत्तों में ढेर कर दिया गया और फिर पत्ते भूमि पर बिछाए गए भगवान को ऑफरिंग करने के लिए। और दही भी था और दूध भी, श्रीखंड और पायस भी और खीर, मलाई और ये सब चीजें। आज आप जाएंगे शाम को प्रोग्राम में तो ये सब चीजें मिलेगा आपको, क्योंकि आज माधवेंद्रपुरी का दिन। एक्चुअली न केवल एक फेस्टिवल अभी हुआ, जब माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव हुआ, वो लीला मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ूंगा जितने भागवत में, तब भी बहुत सारे आइटम्स अर्पण किए गए थे। लेकिन फर्क है कि ये फेस्टिवल वृंदावन में हुआ और वो फेस्टिवल शांतिपुर में हुआ। तो ये गौड़ी, ये ब्रजवासियों ने किया और वो बंगाली वैष्णवों ने किया, इसमें अद्वैत आचार्य। सब कुछ भगवान को अर्पण किया गया और फिर सब खाने के बाद भी वो चीजें वैसे ही रहे जैसे गोवर्धन लीला में हुआ था। भगवान ने सब कुछ खा लिया और वैसे ही रहा। माधवेंद्र पुरी ने दिव्य अनुभव से जान लिया कि गोपाल ने सब कुछ खा लिया है, और किसी को समझ में नहीं आया, सिर्फ माधवेंद्र पुरी को पता चला कि भगवान कैसे स्वीकार कर रहे हैं। माधवेंद्र पुरी ने गोपाल को मुख धोने के लिए पानी दिया, फिर से पान दिया। पहले एक बार ऑफरिंग हुआ था, पानी दिया था, पान दिया था, फिर से ऑफरिंग हुआ, फिर पान दिया, फिर पानी दिया, फिर आरती हुई, सब लोग ने जय जयकार की, श्री गोपाल जी की जय, माधवेंद्रपुरी की जय। फिर भगवान को सुलाने का प्रबंध किया। माधवेंद्रपुरी एक नई चारपाई लेकर आए भगवान के लिए स्पेशल, उसके ऊपर नया चादर भी बिछाया। चारपाई के चारों ओर से एक बड़ा, एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, टेम्पररी वेणुधाम जैसे, सब परंपरा में। और फिर उसके बाद एक खाट और उसको ढकने के लिए, एक क्या लिखा ढकने के लिए, टटिया लिखा है, व्हाट इज दैट, 82 में क्या लिखा, 82 यहाँ पे टटिया लिखे है बंगाली में, स्ट्रॉमेट, स्ट्रॉमेट यानी यही नहीं थी से बना हुआ ना, थोड़ा डिफरेंट, हाँ चटाई भगवान के, सब फर्क, भगवान के लिए मस्कीटो नेट नहीं था, भगवान सिंपल। फिर जब ब्राह्मण चारपाई पर लेट गए तो माधवेंद्रपुरी सबको बोले, आओ आओ सब लोग आओ, बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सबको प्रसाद खिलाया। और सबको पहले ब्राह्मणों को, उनके पत्नियों को खिलाया, और फिर उसके बाद क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको खिलाया। और दूसरे गांव से भी लोग आए दर्शन करने के, दर्शन मतलब प्रसाद भी लिया उन्होंने, कई लोग बाद में भी आए, लेट आने वाले भी थे उस समय, प्रसाद के समय कूपन नहीं था। उन्होंने गोपाल की दीदी का दर्शन किया, प्रसाद भी लिया। फिर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने देखा कि उनको ऐसा ही लगा कि जैसे अन्नकूट भगवान कृष्ण के समय मनाया गया था। प्रभुपाद जी भागवत से बता रहे हैं कि चावल, दाल, हलवा, पकौड़ी, पूरी, दूध के वस्तु, ये सब रसगुल्ला संदेश भगवान ने बोला, एक बार प्रभुपाद वृंदावन में किसी टेम्पल में आए थे और वहां पे गोवर्धन पूजा बहुत सिंपल बनाया था। डिवोटी ने थोड़ा थोड़े आइटम्स बनाएंगे, ज्यादा बनाएंगे, तो प्रभुपाद आए थे इतने गुस्से हो गए, इतने गुस्से बोले कि जो भी चीज कृष्णा बुक में लिखा है ना वो सब आइटम्स बनने ही चाहिए। और यही नहीं, जब बनाने के ड्यूटी प्रभुपाद खुद किचन में गए देखने के लिए कि बना रहे हैं कि नहीं। याद है वो किसने बताया था? ये धनुधर महाराज ने यात्रा में बताया था, सब आइटम्स बनवाए थे। तो प्रभुपाद बहुत पर्टिकुलर थे कि सभी आइटम्स अर्पण करने चाहिए। फिर सारे ब्राह्मणों ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ले ली और उनके सेवा में लग गए। वो आए, दीक्षा ली और पुजारी बन गए। इस तरह से थोड़े उनको सेवा में मदद करने लगे। और सब कुछ देने के बाद फिर अंत में माधवेंद्रपुरी ने थोड़ा सा दूध लिया और फिर विश्राम किया। फिर गांव से लोग कोई अन्न लाने लगा, कोई घी लाता, कोई दूध लेकर आता और अर्चय विग्रह को अर्पण करने लगे। अगले दिन अन्नकूट मनाया गया, सारे ब्राह्मणों ने भोजन बनाया, गोपाल जी ने भी उसको ग्रहण किया। तब कई लोग गाय लेकर आए और अपनी अपनी गाय दान में देने लगे। इस तरह से गाय दान देने से तो मंदिर का खर्चा सब चलने लगा, मतलब दूध से फिर भगवान के लिए भोग बनने लगा। कई लोगों ने जमीन थी वो मंदिर के नाम में अर्पण कर दी। आज भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कई मंदिरों में ऐसा है कि लोग जमीन दान करते हैं, वो जमीन में जो भी अनाज उगेगा वो अनाज बेच के और प्रॉफिट मंदिर को दिया जाएगा। इस तरह से मंदिर किसका? हाँ, जगन्नाथपुरी। कौन है जगन्नाथपुरी? अच्छा, उसका लैंड महाराष्ट्र में, किसी ने महाराष्ट्र में दान दिया वहां के लिए। अच्छा, एक्चुअली हमारे जो कृष्णा प्रभु जी में बात कर रहा था, वो जो मायापुर में जगन्नाथ मंदिर है ना, मायापुर जगत, वहीं पे उनका जन्म हुआ था, के बाजू में, हाँ, धाम में, तिमंत द्वीप में। हम लोग क्या सोचते हैं कई बार कि ना ये तो छोटे बच्चे है और मैं बड़ा हूँ, डांट सकते हूँ, लेकिन एक्चुअली जाना चाहिए धाम में जन्म हुआ तो कीड़ा मकोड़ा को भी प्रणाम करना चाहिए। साष्टा शास्त्रों में लिखा है धाम में जन्म लेने वाले व्यक्ति साधारण नहीं होते, बी वेरी रिस्पेक्टफुल एक्चुअली हर एक भक्त को, धाम हो या कहीं से हो, लेकिन स्पेशली धाम हो। क्योंकि हमको पता नहीं हम कैसे जज करते हैं, कोई भगवे कपड़े में है तो हम सोचते हैं अच्छा भक्त होगा, या किसी कोई कमिटी में है तो अच्छा भक्त होगा, या फिर शिखा लंबा है तो अच्छा होगा, या डोनेशन दे रहा है तो अच्छा होगा जनरली, या फर्स्ट क्लास लेक्चर दे रहा है IMF तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर GBC हो गया तो परम भक्त हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसमें नहीं दिया प्रभु जी, आप क्या देख रहे हैं। हमें कॉमेंट्स कर रहे, लेकिन एक्चुअली भक्त कौन अच्छा है? जिसने भगवान को पूर्ण समर्पण किया। भक्ति में ठाकुर बोलते हैं हरिनाम चिंतामणि में कि एक ही गुण में देखना चाहिए, कृष्ण के शरणम। कृष्ण की शरण में आ गया वो अच्छा है, चाहे उसको अभी गुस्सा भी आ रहा है, उसके अंदर काम क्रोध भी है, अगर कृष्ण की शरण में आ गया तो पूजनीय है और भक्ति करता रहेगा तो शुद्ध हो जाए, वो करता रहेगा शुद्ध हो। इसलिए भक्त को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन किस लेवल से कहां से आ रहे हैं। तो सब पड़ोसी ने बहुत सारे गाय दान में दिए और जमीन भी दान में दिए, मथुरा से भी लोग आने लगे और इस तरह सब कार्य करने लगा। तो माधवेंद्रपुरी ने दो सन्यासी बंगाल से आए थे, बंगाल से वृंदावन, दो सन्यासी माधवेंद्रपुरी ने उनको अपना शिष्य बनाया, उनको दीक्षा दी और फिर उनको सेवा सौंप दी। माधवेंद्रपुरी ने बोला आप ड्यूटी की सेवा करिए। तो दो वर्ष तक तो चलती रही सेवा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक दिन स्वप्न आया। स्वप्न में कौन आए? गोपाल जी। क्या बोले? गोपाल कहे पूरी आमारा ताप नहीं जाए। गोपाल जी बोल रहे हैं आदि गदाधर प्रभु, क्या बोल रहे हैं गोपाल जी? हाँ, मेरा गर्मी गया नहीं अभी तक। मलय चंदन लेप तबे से जुड़ाए। आप जाओ मलय चंदन लेकर आओ और मेरा ताप को दूर करो। जगन्नाथपुरी के पास से जाकर स्पेशल चंदन लेकर आओ मेरे ताप को दूर करने के लिए। मलय जान जाह नीला चल हैते, अन्य हैते नाही तुम ही चलता रहते। अब जल्दी जाओ, और कोई नहीं कर सकता ये काम। स्वप्न देखी पूरी गोसाई रहैला प्रेमावेश, प्रभु आज्ञा पाली बारे गेला पूर्व देश। और ये सुनकर माधवेंद्रपुरी इतने खुश हुए कि तुरंत बंगाल की तरफ पैदल निकल पड़े। समय तो ट्रेन भी नहीं थे, लेकिन ट्रेन होना चाहिए, कंफर्म टिकट हो तो मैं जाऊंगा, नहीं तो बाद में जाऊंगा। और पैदल निकल पड़े वृंदावन से, पूरी करीब 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, पैदल निकल पड़े। हम लोग ट्रेन में आते तो भी थक जाते हैं, नहीं हमारा वो दो नाइट जर्नी होता, या फिर कम से कम एक महीना लगा होगा पैदल जाने में मिनिमम। एक्चुअली नवद्वीप से पूरी आने में एक महीना लगता था इनको, 12 दिन लगते थे रथ यात्रा के आते थे, कम से कम एक महीना पैदल चलना, वो भी अकेले, वो भी उस जमाने में भी चोर थे, ऐसा नहीं कि प्योरिटी वोटी है तो चोर आक्रमण नहीं करेंगे, मुसलमान भी बहुत थे उस समय, चैतन्य महाप्रभु के आने से थोड़े समय पहले है। वो तुरंत निकल पड़े, उन्होंने सेवा सौंप दिया और फिर आगे निकल पड़े। फिर शांतिपुर तक आए और शांतिपुर में अद्वैत आचार्य घर में पहुंचे, वो आज हम पढ़ेंगे। एक दिन शांतिपुर प्रभु अद्वैत, वो आज का फेस्टिवल का वर्णन है, कैसे शांतिपुर में फेस्टिवल होता है। फिर अद्वैताचार्य ने माधवेंद्रपुरी से, माधवेंद्रपुरी शांतिपुर में आए, तारठाई मंत्र लैला यतन कोरिया चलीला दक्षिणापुरी तारा दीक्षा दिया। अद्वैताचार्य ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की, उन्हें दीक्षा देने के बाद माधवेंद्रपुरी दक्षिण भारत की ओर निकल पड़े, क्योंकि रूट उनका ऐसा था, दो रूट है वृंदावन आने के, वृंदावन से पूरी जाने के लिए, एक है वाया शांतिपुर नवद्वीप होकर, दूसरा है झारखंड जंगल होकर। सनातन गोस्वामी झारखंड जंगल से आए थे। रेमुनाते कैला गोपी नाथ दर्शन तारा रूप देखी आहिला विवल मन, उन्होंने गोपीनाथ के दर्शन किए और वो देखकर बहुत प्रसन्न हुए, नित्य गीत करने लगे। अब ब्राह्मण से पूछा, यहाँ भगवान को कौन कौन से आइटम भोग लगता है बताइए, सब आइटम सुना और हमने बताया यहाँ पे सब जो भी आइटम भोग लगते हैं सब उत्तम कैटेगरी के, सब अच्छे फर्स्ट क्लास है। तो सोचने लगे कि मैं ये सब आइटम्स पूछूंगा और फिर जानकारी प्राप्त करके गोपाल जी को वही भोग लगाऊंगा। तो ब्राह्मण ने सब वर्णन किया और बाद में बोला, संध्या भोग लागे चीर अमृत के लीनाम, द्वादश अमृत पात्रे भरी अमृत समान। शाम के समय भोग लगता है, उस खीर का नाम है अमृत केली और 12 बर्तनों में अर्पण किया जाता है और उसका टेस्ट जो है वो अमृत के समान होता है। गोपीनाथेर खीर बोली प्रसिद्ध नाम जार, पृथ्वी ते ऐसे भोग कहा नहीं यार। वो खीर सारे जगत में फेमस है, उसका नाम है अमृत के लिए गोपीनाथ खीर, दुनिया में कहीं नहीं मिलते। गोपाल चार प्रभु यह बिंदर खीरचर गोपीनाथ, हे न काले से भोग ठाकुरे लागिला सुनीपुरी गोसाई की शु मने विचार करीला। अब उस समय ऑफरिंग का समय हुआ था तो माधवेंद्र पुरी मन में सोचने लगे, अयाचित खीर प्रसाद अल्प यदि पाए, अगर अयाचित मांगूंगा नहीं, वो इतने नम्र थे मांगना भी नहीं चाहते थे, लेकिन बिना मांगे अगर पुजारी मुझे थोड़ा सा स्वीट राइस देते हैं तो स्वाद जानी तैचे तीर गोपाल लगा ऐसे, क्योंकि कई बार इसे जो डिवोटी ऑफरिंग करने के बाद थोड़ा टेस्ट करते हैं कि कैसा बना आइटम, जिससे कि नेक्स्ट टाइम और सुधार सके, नमक मिर्च ठीक है कि नहीं या शक्कर ठीक है कि नहीं। सोच रहे थे कि मैं टेस्ट करूंगा फिर वैसा ही आइटम वहां बनाऊंगा। ए इच्छा लज्जा पाया विष्णु स्मरण कैला हे न काले भोग सरी आरती बाजील। माधवेंद्रपुरी को खीर चखने की इच्छा हुई फिर लज्जा आने लगी, अरे मैंने ऐसा क्यों सोचा, विष्णु विष्णु क्या अपराध कर दिया, भगवान को भोग लग रहा है ऑफरिंग हो रहा और मैं खुद के खाने की सोच रहा हूं, मैं कितना पतित हूं। भक्ता गुण है हमेशा अपने आप को कंडेम करना हमेशा, देखते हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी, रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे और पीते सोचते थे ये शरीर जो नाशवान है क्यों मैं इसके मेंटेनेंस का इतना टाइम खर्च कर रहा हूं, क्यों रघुनाथ दास हम लोग दिन में 3 बार खाते हैं फिर लगता ही नहीं है फिर कुछ भी क्या, एकादशी के दिन भी नहीं, 2 बार और नॉर्मल के 3 दूध। ऑफकोर्स हमारी बॉडी बहुत जरूरत भी है सेवा के लिए, जीवा भी बहुत प्रेम है हमको, लेकिन फिर ये प्रयास होना चाहिए कि धीरे धीरे हम खाना और सोना कम करें। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जितना आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कैसे जान सकते हैं धीरे धीरे खाना और सोना कम होना चाहिए। अरे बॉडी तो एडाप्टेबल भी है, मतलब अगर आपको आदत होगी कम खाने की तो फिर वो कम से भी काम चल सकता है, हैबिट की बात है। हैबिट। जैसे राधा गोपी नंद मंदिर में 9 बजे ब्रेकफास्ट होता है, नहीं अगर क्लास लंबी हो तो लोग बोलते हैं कि बहुत, लेकिन यहाँ पे 10 की हैबिट है तो 10 बजे हो जाता, तो एक हैबिट की बात होती है। ऑफकोर्स थोड़ा तो लेना ही, ऐसे नहीं कि हैबिट ही नहीं होगी तो खाएंगे ही नहीं, फिर भी चलते, उतना तो हमारा लेवल नहीं है। जैसे मेरे एक शिक्षा गुरु अमोघ लीला प्रभु पाकिस्तान में प्रचार करते हैं, बहुत सारे बहुत सीनियर डिवोटी, फर्स्ट डिवोटी जो मेरे को मिले थे जीवो में 76, वो क्या करते थे कि हर बोले हर साल मैं 10 मिनट निद्रा कम करता जाता, 10-10, 5-5 मिनट, यानी 5 साल में 1 घंटा कम हो जाए। ऑफकोर्स मिनिमम तो 3 घंटे तो चाहिए, क्योंकि गोस्वामी भी सोते थे, लेकिन कर सकते। राधेश्याम प्रभु को मैंने देखा है पिछले 5 सालों से खाली 4 घंटे सोते हैं, 4 घंटे बस, दिन में बिल्कुल नहीं, कभी कभी 6 हो जाते हैं, मतलब ट्रेन में हुए, कुछ कार्य नहीं हुआ तो। इतना सेवा भावना, डिवोटीज को सीखना चाहिए इससे कि मैं कैसे निद्रा कम करूं, भोजन कम करूं। निद्राहार विहार है कि यदि विजय तो ये टेस्ट एडवांसमेंट का, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लेक्चर दे सकता है थोड़े प्रिपरेशन के साथ, थोड़े जोक्स कर लो, लोगों को अच्छा लगता है, लोग बोलते हैं कितने अच्छा स्पीकर है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया तो आप फिर प्रोफेसर बन जाते हैं ना लोग, लेकिन रियल टेस्ट है कितना आपका आहार कम हो रहा है, निद्रा कम हो रही है, मान सम्मान की इच्छा कम हो रही है, सेक्स डिजायर कम हो रहा है। सेक्स डिजायर सबसे बड़ा डेंजरस है, लिबरेशन मीन्स नो सेक्स लाइफ, सेक्स की इच्छा ही नहीं होना, तो धीरे धीरे, और सब जुड़े हुए हैं, जितना ज्यादा खाओगे सेक्स इच्छा और बढ़ेगी, एजिटेशन बढ़ेगा, तो कम खाना सिंपल, भाला ना खाई भाला, और ये खाली सन्यासी के लिए नहीं, गृहस्थ के लिए भी, धीरे 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 सोचना। जैसे हर बिजनेसमैन सोचता है कि कैसे कम से कम चीज में ज्यादा प्रॉफिट हो, है कि नहीं, हर जो इन्वेंशन करते हैं नया नया मॉडल आता है सोचते हैं कैसे ज्यादा माइलेज मिले, ये 40 किलोमीटर देता है 1 लीटर में, है ना, ये नया मॉडल आ जाता है 60 किलोमीटर, कोई कोई 80 किलोमीटर, लेटेस्ट क्या था जब आप थे इसमें 80 थे ना, 800 कितना था, 90 था, क्यों 90 किलोमीटर, कोई बोलते हैं पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन ये बॉडी ऐसा है, आप अडॉप्ट कर दो उसको कि कम से कम खाने में हो जाए, बस ज्यादा से ज्यादा हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति तीर्थ महाराज दिन में सिर्फ एक बार लेते प्रसाद, सिर्फ एक बार, आप बॉम्बे में भी कई ब्रह्मचारी हैं जो सिर्फ एक ही बार लेते हैं, तो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, धीरे 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 कम कर दिया। अब फिर वो सोचने लगे विष्णु विष्णु मैं क्या सोच रहा हूँ, भगवान को भोग लग रहा है, पर्दा बंद हुआ है, और मैं प्रसाद खाने की सोच रहा हूँ तो फिर उन्होंने सोचा कि ये ठीक नहीं है। फिर आरती का समय आया, और आरती दर्शन करके माधवेंद्र पुरी मंदिर से बाहर चले गए, उन्होंने मांगा भी नहीं। और प्रेमामृते तृप्त क्षुदा तृष्ण नाही बाधे क्षीर इच्छा है लता है माने अपराधे। कि माधवेंद्र पुरी इतने हाई लेवल पर थे, इतने ऊंचे स्तर पे थे प्रेम भक्ति के, कि वो संतुष्ट रहते, कुछ नहीं मिलने पर भी भूख और प्यास उनको सजाती, उनको सताती नहीं, और जब भी उन्हें अर्चय विग्रह पर अर्पित खीर खाने की इच्छा हुई तो अपराध मानने लगे, क्योंकि मैं अर्चय विग्रह पर अर्पित जो ड्यूटी ऑफरिंग हो रहा है मैं स्वयं खाने के लिए सोच रहा हूं। प्रभुपाद यहाँ कमेंट करते हैं, परमहंस को विजित षड्गुण कहा गया, षड्गुण मतलब 6 दुर्गुण है उसको जिसने जीत लिया है वो परमहंस है। वो 6 दुर्गुण क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मद की जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं क्षुधा तृष्णा, यहाँ पे हंगर और थर्स्ट, हम तो इसको अपना पूजनीय ड्यूटी मानते हैं, अगर हंगर ही नहीं हो तो फिर मंदिर में क्या फायदा, नहीं अगर आए गुरुवार कार्यक्रम में भूख नहीं लगा, लोग रात को 10 बजे भी यू नो राजभोग के बाद लोकल राजभोग ये हमारा चाहिए हमको, लेकिन एक्चुअली ये बात है, एटलीस्ट मालूम होना चाहिए, हो सकता है ये जन्म में पूरे नहीं हो लेकिन सोचना चाहिए, हम कैसे मुक्त होंगे इन इच्छाओं से। परीक्षित महाराज 7 दिन थे, भूख प्यास सब भूल गए थे, एब्जॉर्ब थे। दुनिया में भी मैंने देखे है, भैया मैं छोटा था मैं क्रिकेट मैच सुनता था, एक बार सुनते सुनते इतना श्रद्धा भक्ति रति कि पता ही नहीं चलता, नहीं कि स्टूडेंट्स लोग सुनने बैठते हैं बीबीसी लंदन रात के समय, तो वही चीज को यहाँ उपयोग करना चाहिए ना, बस श्रवण में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, पता ही नहीं चले कि क्या टाइम हो रहा है, सेवा है तो उठना, नहीं तो प्रसाद भूल भी गए कोई बात नहीं, एब्जॉर्प्शन के ऊपर हर एक को प्रयास करना चाहिए, मैं कृष्ण कथा में एब्जॉर्ब हो जाऊं। तभी अचानक एक पुजारी आया, सॉरी सॉरी पुजारी ने भगवान को शयन कराया और जब सोने के बाद में उनको स्वप्न आया। किसको स्वप्न आया इस बार? पुजारी को, हेड पुजारी को। क्या स्वप्न आया? उठा पुजारी कर द्वारा विमोचन, हृदय का राखिया छे संन्यास कारण। तो अचानक पुजारी को स्वप्न आया, कौन कर रहा है उनको सपना है कि उठो उठो अभी नहीं, फिर ऑफरिंग होने के बाद। कि आपने देखा नहीं लेकिन मैंने पर्दे के पास में एक एक कुछ छुपा के रखा है। वो खीर का पात्र जब पर्दे के पीछे है, तुम्हारा न जानी लता हमारा माया है। मैंने माया की दृष्टि से आपको ढक दिया, आपने देखा नहीं। जनरली 12 मटके होते हैं खीर के, आपने एक वहीं पे रह गया। माधवपुरी रा सन्यासी आछे हाटे ते बसिया, माधवेंद्रपुरी बैठे हुए हैं। कहाँ पर बैठे हैं? हाट, हाट यानी मार्केट प्लेस। ताके ता एक खीर शीघ्र दे लिया, अब जाओ जल्दी जाओ और एक खीर अर्पण करो। तो पुजारी उठे, तुरंत स्नान किया, फिर देखने गए। जनरली ऐसे पुजारी कोई चीजें छोड़ते नहीं है, बांट देते हैं या ये कैसे हो गया, ये एक मटका में कैसे भूल गया। तुरंत उन्होंने चेक किया और सही में पर्दे के पीछे था। उनको इतना आश्चर्य हुआ, तुरंत उन्होंने पहले पोछा लगाया, उधर क्लीन किया उस स्थान को और मटके को बाहर लेके निकले। द्वार दिया ग्राम बेले ग्राम ग्राम गेला से खीर लैया, हाटे हाटे बोले माधव पूरी के चाहिया। तो बात ड्रामा और उसको मालूम ही नहीं पड़ा। अर्जुन वो पुजारी बाहर निकला, अरे गांव जाके ढूंढने लगा। एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब भी कोई भक्त परंपरा में पढ़ रहे हैं ना ये वचन को, तो लीला हो रही होती है। जैसे आप गोवर्धन लीला सुन रहे हैं तो हो रही होती है। यस, हमने सुना है। महाराज जी बोलते हैं जब भी मैत्रेय मुनि और विदुर का संवाद हो रहा है, मैत्रेय मुनि है वहां पे, विदुर है, एक्चुअली लीला हो रही है। ऑफकोर्स ये नहीं भी आए तो भी हो रही है। भगवान और हमारी श्रद्धा को बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम एडवांस डिवोटीज हैं, इसलिए देखने से श्रद्धा। द्वार दिया ग्राम बोले सही खीर लैया, खीर लेके गए। हाटे हाटे बोले माधव पुरी के चाहिया, दरवाजे में जाके पुकारने लगे माधवेंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी। बोलो सब लोग बोलो माधवेंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी। खीर लह जार नामा माधवपुरी, तोमा लागे गोपीनाथ खीर कैल छुरी। पुजारी जोर से पुकारने लगे जिस भक्त का नाम माधवेंद्रपुरी है आ जाओ जल्दी आ जाओ, आपके लिए भगवान ने खीर चोरी की। अब यहाँ बोला तो सब बोलते हैं खीर दे दो, नाम क्या मालूम नहीं। लेकिन माधवेंद्रपुरी छुपके बैठे थे, वो जप कर रहे थे पेड़ के पास में। खीर लैया सुखे तुमी करी भक्षण, बोले आप भी खीर को लो, भक्षण मतलब खाओ। तोमा सम भाग्यवान नाही त्रिभुवन, आपके समान भाग्यवान कोई नहीं है तीन जगत में। एता सुनी पूरी गोसाई परिचय दिल, खीर दिया पुजारी तारे दंडवत खैल। निमंत्रण सुनकर माधवेंद्र पुरी बाहर आए, उन्होंने अपना पहचान बताया, माजात नाम है माधवेंद्र पुरी। पुजारी ने खीर पात्र दिया, वो धन्यवाद करने लगे। तो कितने एडवांस डिवोटी है। एक्चुअली हिस्ट्री में और कोई रिकॉर्ड सुना नहीं है, तो सुना आपने भगवान भक्त से चुरा रहे हैं, तो भगवान दास बन जाते हैं, ऐसे कोई रिकॉर्ड है? भगवान कोई छिपा के रख रहे हैं? हाँ अपना अपने में छिपाते हैं, वो तो है ही, वो भी एक लेवल एडवांसमेंट। लेकिन एक्चुअली बहुत रेयर है, मैंने सुना नहीं है कोई शास्त्र में और कोई डिवोटी है। फिर सपने भगवान तीन बार आए हों, खीर चोरी कर रहे हैं। यही मालूम पड़ता है कि जो अनन्य चिंत जनते हो मां जनक पर, जो अनन्य रूप से भगवान भक्ति कर रहे हैं, भगवान उसके लिए सब कुछ अरेंज करते हैं। अनन्य शुद्ध भक्त होना चाहिए, शुद्ध भक्त होंगे तो सब कुछ भगवान अपने आप देते हैं। फिर एता सुनी पूरी गोसाई परिचय दिला, खीर दिया पुजारी तारे दंडवत हिला। ये निमंत्रण सुन के माधवेंद्र पुरी आए, दंडवत किया। खीरे रवृतांत तारे कहिला पुजारी, पुजारी ने पूरी कथा सुनाई, शुनी प्रेमा विष्ट है श्री माधव पुरी, प्रेमा विष्ट हो गए। और माधवेंद्र पुरी में प्रेम भाव देखकर पुजारी सोचने लगे कि कृष्ण कितना प्रेम करते हैं, कृष्ण कितने कृतज्ञ हैं। तो माधवेंद्र पुरी को नमस्कार करके पुजारी अपने मंदिर में चले गए और माधवेंद्र पुरी वो खीर को खाने लगे। पात्र प्रक्षालन करी खंड खंड खैला बहिरवा से बांधी से टिकारी राखीला, लेकिन उन्होंने खीर को खाया और बर्तन के भी टुकड़े टुकड़े करके उसको भी कपड़े से बांध के रखा और रोज थोड़ा सा बर्तन भी खाते थे, इसकी मटकी भी बहुत स्पेशल। प्रतिदिन एक खानी करे न भक्षण खाई ल प्रेमा वश है यह अद्भुत कथन। प्रतिदिन थोड़ा सा खाते और थोड़ा मिट्टी का जो है, चैतन्य महाप्रभु भी खाते थे मिट्टी। कैसे खाते थे मिट्टी? हाँ नहीं, कल मैंने बताया था चैतन्य मिट्टी खाते थे, भूल गया? अगर आप वो बोलते तो मैं ये बोलता था। चैतन्य महाप्रभु शची माता जब खीर लेके आती है संदेश लेकर तो मिट्टी खाते। और सेकेंड इंसिडेंट जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो प्रेम ईश्वरपुरी के जन्म स्थान पे गए थे, उसका नाम था कुमारहट्ट। तो बाबू एक्सेस कुमारहट्ट ये मेरे गुरु की जन्मभूमि है। उन्होंने उस मिट्टी को लिया और वो खाने लगे और बांध के ले गए, थोड़ा थोड़ा रोज खाते थे। और ऐसे ही सब डिवोटीज में परंपरा हो गई, सब डिवोटी जाते वहां मिट्टी लेने लगे, इतनी मिट्टी निकाल के एक बड़ा कुंड बन गया वहां, देखा आपने, चैतन्य डोब बोलते हैं इसका, बड़ा कुंड बन गया। तो मिट्टी थोड़ा थोड़ा खा रहे, जैसे समझो खुदाई करनी और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं तो थोड़ा थोड़ा सब निकाले तो हो जाएगा, सबको बोले मिट्टी मिट्टी निकाले तो बड़ा कुंड हो गया, चैतन्य डोब बोलते हैं। आज भी है यार, महाराज लेके गए थे हमको कुमारहट्ट, एक ही बार गए हम लोग, हलीशार का दूसरा नाम है, रेलवे स्टेशन के पास में हलीशार। प्रेमे देखी सेवक कहे है विस्मित कृष्ण जे इहार अवश्य है यथोचित। माधवेंद्र पुरी की जब प्रेम के लक्षण को देखकर पुजारी समझ गए कि कृष्ण उनके प्रति कृतज्ञ क्यों है और कृष्ण ने क्यों कार्य किया। तो आप कैसे उस स्तर पे आ सकते हो कि भगवान आपको इतना प्रेम करें? प्रभुपाद परपर में बताते हैं कैसे आपका वो भक्ति आ सकती है, कैसे आप भगवान को जीत सकते हो। भगवान को जीतने क्या तरीका है, बुद्धि बल से या शारीरिक बल से? मनीष कैसे भगवान को पराजित कर सकते हैं आप? क्या प्रैक्टिकल क्या तरीका है? ज्ञाने प्रयास उदपास नमंत एव जीवंती सक सन्मुखम दम भवदीय वार्ता स्थाने श्रिता छाने सुता श्रुतिगतान तनुमान मनोभीर ये प्रयास अजीत जीतोपि तैस्त्र लोक्यम। अजीत जीतोपि इसका अर्थ क्या हुआ भीमा प्रभु? जो कभी जीते नहीं जाते इनका नाम अजीत है, वो भगवान जीत लिए जाते हैं। किसके द्वारा, किसके द्वारा जीते जाते हैं? श्लोक नहीं सुना आप लोगों ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना में, किसके द्वारा जीते जाते हैं, किसके बारे में बोल रहा है श्लोक? जो ज्ञान के प्रयास को छोड़ देते हैं और जीवन की सत भोगीय वार्ता कृष्ण कथा भक्तों से सुनते हैं, स्थानीय स्थित अपने स्थान में रहकर जो भी वर्ण और आश्रम है वहीं पर रहकर, और तनुमान मनोभीर हृदय से, इसलिए नहीं क्योंकि प्रभु जी बोल रहे हैं अभी तीन दिन के लिए प्रभु जी हैं चलो उनको खुश करना ही है बुरा लगेगा, इसलिए नहीं। या अभी कोई बॉम्बे से कोई नहीं आए तो लोकल डिवोटी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान तो वही है, शास्त्र तो वही है, स्थान में स्थित रह के बस स्थिर रह के श्रवण करना, स्थान स्थित है यही कृष्ण को जीतने का तरीका है, ये सीक्रेट है। प्रभुपाद ये श्लोक पे बहुत जोर देते थे, स्थान स्थित है ऑफ कोटेड वर्सेज में से एक है प्रभुपाद, ये भगवान को जीतने का ही तरीका है। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त, क्योंकि जब हम कृष्ण कथा को श्रवण करने लगते हैं सबमिसिवली, कोई भी बोल रहा हो चाहे प्योर डिवोटी नहीं भी हो, अगर वो प्योर डिवोटी के संत को दोहरा रहा है तो उससे भगवान कृष्ण हृदय में बैठे वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो हृदय को साफ करते हैं। जैसे समझो कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है दूसरे व्यक्ति को, तो बता रहे कि देखो यशोदानंदन प्रभु कितना अच्छा गाते हैं, बहुत सेवा की, रथ यात्रा में जगन्नाथ के लिए उन्होंने कपड़े ड्रेस बनवाई थी, तो कितना अच्छा लगता है ना यशोदानंदन प्रभु, कितना अच्छा लगता है सुनने में, ऑनेस्ट है वहां बोल रहे। लेकिन समझो मैं सुना रहा हूं किसी को यशोदानंद प्रभु इतने अच्छा गाते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनते सुनते ऐसे सो रहे थे, तो उसको अच्छा नहीं लगे, देखो मेरी महिमा गान हो रही है और ये सो रहे हैं। ऐसे भगवान की कथा जब हम ध्यान से सुनते हैं भगवान बहुत खुश होते हैं, जब हम सो जाते हैं तो उतने खुश नहीं होते। ऐसे उससे ज्यादा भगवान के भक्तों की कथा, अब यशोदानंदन को उतनी खुशी नहीं होगी लेकिन इनके पिताजी को कितनी खुशी होगी अगर यशोदानंद का गुणगान किया तो। ऐसे भक्त का गुणगान जो है भगवान को और भी ज्यादा अच्छा लगता है। अब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, माधवेंद्र पुरी, अभी गोगुणता कितनी खुशी होगी माधवेंद्र पुरी का गुणगान हो रहा है, और अभी वो गुणगान जो गौरंगा ने नित्यानंद को सुनाया था। गौरंग महाप्रभु ने नित्यानंद, जगदानंद, दामोदर, ये चार लोग थे, उनको कथा सुनाई थी। तो इसलिए ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड एंड हिज डिवोटीज, द सुप्रीम रिलीजन, सबसे बड़ा धर्म यही है श्रवण कीर्तन। फिर माधवेंद्रपुरी को नमस्कार करके पुजारी चला गया, और तब तब मन ही मन माधवेंद्रपुरी सोच रहे थे भगवान ने मुझे खीर दिया और ये समाचार अभी सबको मालूम पड़ जाएगा, अब मुझे यहां से चले जाना चाहिए। प्रसिद्धि क्या वो क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा एक शुक्र विष्ठा, प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, विष्ठा गंदी चीज है लेकिन सुअर तो विष्ठा खाता ही है, उसके बाद जो उसकी विष्ठा हो गई सुपर विष्ठा, इसलिए भक्त को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, दूर चले जाते हैं किसी को मालूम नहीं पड़े। अरे हमारा ऐसे कैसे होगा, भगवान ने खीर चोरी की, हम बोलेंगे फोटो निकालो बीटीजी में डालो, कम से कम लोकल यहाँ वेणुधाम के नोटिस बोर्ड पे लगाओ कि देखो इस डिवोटी के लिए भगवान ने खीर चोरी किया, कोई भी इंसिडेंट होते हैं सबको बताना चाहते हैं, हमारा नियोफाइट लेवल है इसलिए उसके लिए ठीक है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तो हमको लगता है कि नहीं मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सेवा चाहिए। इसलिए वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं और जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं, और जगन्नाथपुरी में पहले ही भक्तों को समाचार मिल गया होता है और सब इंतजार कर रहे थे, ओ माधवेंद्रपुरी तुम वही हो ना, तुम्हारे लिए भगवान ने खीर चोरी की। देखो SMS नहीं था, ईमेल नहीं था, लेकिन फिर भी समाचार जाता था, जैसे वर्ड ऑफ माउथ से या किसी तरीके से सबको समाचार मिल गया। और सब लोगों ने जब माधवेंद्रपुरी ने देखा कि मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए फिर भी प्रतिष्ठा मिल रही है, तो उन्होंने प्रतिष्ठा का उपयोग भगवान की सेवा में किया। कैसे, उन्होंने बोला पुजारी को, हाँ मैं वही माधवेंद्रपुरी हूँ, अब मेरे गोपाल जी को चंदन चाहिए, आप मदद करो। तो बहुत खुश हो गए, उन्होंने बहुत अच्छा चंदन लेकर आए, तो ऑफिसर भी एकत्रित हो गए, सरकारी ऑफिसर्स, और कपूर भी दिया, चंदन भी दिया, और एक ब्राह्मण भी दिया, और एक असिस्टेंट भी दिया, नौकर भी दिया, इसको साथ में लेकर जाओ, और रास्ते में चुंगी वसूल करने से बचने के लिए सरकार ऑफिसर के पेपर्स भी दिए, टैक्स ऑक्ट्राय उस समय भी था, तो उसके लिए पेपर दिए कि ये खाली भगवान के ड्यूटी के लिए ले जा रहे हैं, साइन करा के। और माधवेंद्रपुरी ये सब लेकर फिर वापस वृंदावन की ओर गए, हरे कृष्ण, वृंदावन की ओर गए, और वहां पर फिर से रेमुना पहुंचे, सेम रूट से जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने के लिए रेमुना गए, और रेमुना में फिर से दर्शन किए किसके, खीरचोर गोपीनाथ। इस बार जब वो गए तब उन्होंने दर्शन किए, इस बार पूरी देखे सेवक सब सम्मान करिला, खीर प्रसाद दिए तारे भिक्षा कराईला। इस बार क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी ने फिर से आया देखकर बिना बिना मांगे लोगों ने खीर लाके दी, माधवेंद्रपुरी ने मंदिर में विश्राम किया, लेकिन सोते समय रात को और एक स्वप्न आया। इस बार क्या स्वप्न आया, नहीं आप मत बोलिए बाकी लोग, क्या स्वप्न आया इस बार सागर प्रभु, आपको स्वप्न तो नहीं आ रहा ना, आप आगे आ जाइए, नींद आ रही, आगे आ जा, क्या स्वप्न आया सेकेंड टाइम, क्या स्वप्न आया किसी को नहीं मालूम, बलदेव प्रभु, हाँ गोपीनाथ और गोपाल अभिन्न है, भगवान सपनों में आए और बोले कि ये सब जो चंदन है, गोपाल आसिया कहे सुन हे माधव, कर्पूर चंदन आमी पाईला सब, कि बोले मुझे सारा चंदन और कपूर मिल चुका है, मुझे मिल चुका है, कर्पूरा सहित घसी ए सब चंदन गोपीनाथ तेरे अंगे नित्य करह लेपन, अब ये चंदन है गोपीनाथ को अर्पण कर दो, तो कोई अंतर नहीं है मेरे में, जैसे यहाँ पे गौरनिताई है और 7K मुंशी और गौरनिताई है, तो कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे भी गोपीनाथ का फोटो है और गोपीनाथ है, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्या सोचा नहीं ये खाली लेमिनेशन है ये भगवान नहीं है, ऑफकोर्स DT स्पेशल है लेकिन DT का फोटो भी अभिन्न है, आप फोटो से भी बात कर सकते हैं, आप सिंसियर हैं, आप गोपीनाथ की फोटो से बात कर रहे हैं तो एक्चुअली आपको भगवान बात कर रहे हैं, हम रामेश्वर गए थे तो हमको स्नान करना था, याद है आपको? आप थे गोपति प्रभु, वो संगम में स्नान करना था धनुषकोटी में, जहां पे स्नान करने से जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। मैं 3 बार किया, पता नहीं अभी क्या होगा, ज्यादा स्नान हो गया प्योर स्नान होना चाहिए। तो हम स्नान करने गए तो वो पुलिस इंस्पेक्टर आया और बोला नहीं यहाँ स्नान करना अलाउड नहीं है, यहाँ के अभी 9 बज रहे हैं, आप जल्दी से खाली कर दो। 12 बजे ये जो इलाका है दो समुद्र के बीच में, मनीष आप थे ना, हम लोग गए थे, शिवानंदन प्रभु आप थे साउथ यात्रा में, हाँ मेरे साथ थे, तो सेम समुद्र था वो वहीं आपको याद है हम लास्ट पॉइंट तक गए थे वो लॉरीज में, हमारा छोटा ग्रुप था, सब लोग को एंड तक लॉरीज में लेके गए थे और फिर वहां पे स्नान किया था। एक तरफ इंडियन ओशन और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, दोनों का संगम, दो कलर के पानी मिलते हैं यहाँ पर। तो ऑफिसर बोला नहीं ये जो बीच वाला स्थान है खतरनाक है, यहाँ पे पानी भर जाएगा 1 बजे 12 बजे, और 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो सब बड़े तीन चार ऑफिसर्स पुलिस के, तो महाराज इनको बोला कि आप बात करो, गौरंगपुर तमिल में बोल रहे थे इसको, लेकिन बोला नहीं बहुत खतरनाक। फिर बोला कि आप महाराज को अलाउ करो, बोला नहीं किसी को भी नहीं अलाउ करें। फिर पता नहीं सो क्या उसके मन में, बोला ठीक है हम स्नान कर सकते हैं, 10 बजे तक खाली कर देना। अभी स्नान करने के बाद जब महाराज इनको बोले धन्यवाद, तो बोले कि आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पहली बार मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर वो जैसे हर एक होता है ना, वो हमारे डिवोटी फोटो लेने हैं, तो बोले हाँ मेरी भी फोटो ना साथ में, महाराज के साथ एक फोटो चाहिए। फिर महाराज तो बोला कि आप कुछ दे दो अपने से। महाराज बोले क्या चाहिए आपको, बोले आपके चरणों की धूल दे दो नीचे, आपके पैर के नीचे से। फिर महाराज बोला डिवोटी तो कोई फोटो है क्या, तो किसी के पास वो फोटो थी जो वरदराज की, तो महाराज ने दी एक एक, लेकिन फिर किसी डिवोटी के पास गोपीनाथ की फोटो थी, राधा गोपीनाथ की, तो महाराज ने जो सबसे जो फेवरेबल ऑफिसर था उसको गोपीनाथ की फोटो दी, राधा गोपियां ललिता विशा को छोटे से कार्ड छापते हैं ना एड्रेस के जो गेस्ट रिसेप्शन में देते, तो पहले उसको दिए, फिर और 2-3 मिल गए, सबको एक एक दिया। वहां बहुत स्पेशल है क्योंकि एडीटी की फोटो वो है। वहां मसूरी भी गए थे 10 साल पहले, तो गोविंद प्रभु उनके असिस्टेंट के रूप में गए थे, तो हिंदी सीख रहे थे महाराज। तो कोर्स पूरा होने के बाद वो टीचर को धन्यवाद देने के लिए महाराज ने बोला कि एक फोटो दो, गोविंद प्रभु को बोला तुमने कई फोटो निकाले दूसरे ड्यूटीज के, महाराज बोला नहीं गोपीनाथ का फोटो दे, और फिर वो फोटो दिया। तो एक्चुअली स्पेशल होता है फोटो, एक्चुअली होता ही चाहिए कि ये तो फोटो 2 रुपए के, अगर हाँ 60 रुपए का तो ज्यादा अच्छा है, और डीटीज है 30,000 रुपए का तो और भी ज्यादा, इन्हें मेटीरियल जैसे दे। एक्चुअली एक फोटो छोटी फोटो भी आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर है, अगर आप सोच रहे कि ये फोटो साथ में है मेरे तो गोपीनाथ साथ में, तो आपको एक्चुअली भगवान बात करेंगे, आप उनको ऑफरिंग भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेटर में बोलते हैं नॉट ओनली कृष्णास फोटो स्पिरिचुअल मास्टर्स फोटो ऑल्सो इज नॉन डिफरेंट। जैसे प्रभुपाद की फोटो आप देख रहे हैं, प्रभुपाद है वहां पर, एक्चुअली प्रभुपाद है, हम समझ नहीं सकते, इसलिए जनरली महाराज मना करते हैं टी शर्ट्स वगैरह रखना है ना, क्योंकि टी शर्ट्स पे कृष्ण है, फिर आप उसको बाथरूम में ले जा रहे हैं, फिर उसको धो रहे हैं, तो ये सब चीजों का अवॉइड करना। ऑफकोर्स ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, मतलब मैं खाली महाराज का ओपिनियन बता रहा हूं। तो जब हम बोले कि ये चंदन जो है गोपीनाथ हमारे से एक अंग है, इहा के चंदन दिल हबे मोर ताप छय, मेरे और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। जैसे एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, नहीं आपने बॉम्बे में डिपॉजिट किया आप निगड़ी में विड्रॉ कर सकते हैं, इस्कॉन के कोई मंदिर और स्पेशली निगड़ी और निगड़ी गोपीनाथ और गोपीनाथ गौर नेताई और चरण के मुंशी मार्वल दोनों एक ही। अब महाराज पूना के बारे में बोल रहे थे कि पूना और बॉम्बे जो है वो ऐसे हैं जैसे एक ही घर के 2 कमरे हों, एक ही घर का लंबा पैसेज है बीच में। और अल्टीमेटली कोई भी राधा माधव और राधा माधव मायापुर में और राधा श्याम सुंदर वृंदावन में, वो एक ही है भगवान। तो कहने का मतलब यह कि अगर श्रद्धा से कोई सेवा करता है कहीं पर भी, एक्चुअली वो कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है। इसलिए भक्ति तीर्थ महाराज ने निश्चय किया कि मैं Washington DC गीतानागरी में देह त्याग करूंगा। हालांकि वो एक सोचेगा शरीर छोड़ना है तो वृंदावन जाना चाहिए, मायापुर जाना चाहिए। बोले नहीं, जहां पे प्रभुपाद जी के स्थापित मंदिर है वो स्थान भी वृंदावन ही, मेरे लिए वो भी वृंदावन, वही जगन्नाथपुरी। समाधि उन्होंने बोला मेरी मायापुर में बनाना, एशिस पर, क्योंकि बॉडी को ले जाना मुश्किल होता है अमेरिका से। और हमारे आचार्य में भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि जो है वो बॉडी को जला के राख से किया गया, क्योंकि मुसलमानों का कोई डर था, वो डिसेक्रेट कर सकते हैं, इसको खराब कर सकते हैं। चरु महाराज भक्ति तीर्थ महाराज की समाधि भी जो है वो बनाई जो है एशिस एशिस को नीचे रख के। तब माधवेंद्रपुरी की नींद स्वप्न से मुक्त हुए, उठे और नौकरों को बुलाया, बोला सुनो सुनो, भगवान की आज्ञा हुई है कि ये सब चंदन आपके विग्रह गोपीनाथ को अर्पण किया जाए, और इससे गोपाल जी भी खुश हो जाएंगे, गोपाल जी को भी शीतलता महसूस होगी। और ये सुनकर सब बहुत खुश हो गए कि इतना इतना हमारा सौभाग्य है हमारे ड्यूटीज का। अब मैं थोड़ा वो लीला बताना चाहता हूँ जो आज के दिन की है, माधवेंद्रपुरी तिरुभाव दिवस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। ये लीला का वर्णन चैतन्य भागवत के अंत्य खंड में दिया गया है कि कैसे अद्वैत आचार्य के घर में बड़ा उत्सव मनाया गया आज के दिन। आज माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव दिवस है। एक्चुअली इससे पहले और एक पॉइंट है जो मैं अभी आपको चैतन्य चरितामृत बताना भूल गया। पूरी कथा सुना रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जगदानंद दामोदर और गोविंद ये चार भक्तों को, और लास्ट पार्ट ये था कि माधवेंद्रपुरी फिर जगन्नाथपुरी से वापस वृंदावन पहुंच गए और चार महीने के जगन्नाथपुरी में रहे चतुर्मास्य के समय। चैतन्य महाप्रभु श्री मुखे माधवपुरी अमृत चरित्र भक्तगण सुनाया प्रभु करे आस्वादित। भगवान खुद आस्वादन करते हुए भक्तों को सुना रहे थे। प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पूरी सम भाग्यवान जगते नहीं यार। भगवान बोले देखो नित्यानंद कौन है व्यक्ति जो माधवेंद्रपुरी के समान भाग्यशाली होगा। दुग्ध दान छले कृष्ण जारे देख दिल, तीन बारे स्वप्न आसी जारे आज्ञा दिल। कि भगवान माधवेंद्रपुरी इतने भाग्यशाली हैं कि दूध देने के बहाने साक्षात भगवान उनके सामने आए और भगवान ने माधवेंद्रपुरी को तीन बार स्वप्नों में आदेश दिया। तीन बार कभी, एक बार गोपाल जी मेरे को निकालो यहाँ से, दूसरी बार चंदन ले आओ, तीसरी बार चंदन यही अर्पण कर दो। तीन बार प्लस खीर चोरी किया उनके लिए। जार प्रेमे वश है या प्रकट है ला, सेवा अंगीकार करे जगत तारी ला। गोपाल जी अप्रकट थे, गोपाल जी प्रकट हुए माधवेंद्रपुरी की सेवा को स्वीकार करने के लिए और अब वो सबको दर्शन दे रहे हैं। अब नाथद्वारा में जाओगे तो कोई गया यहाँ से नाथद्वारा? वेरी ग्रेट रश देयर, नहीं बहुत रश। इवन जो लोग को भगवान में प्रेम नहीं भी है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रोक जाते हैं नाथद्वारा। और वो क्या ट्विन सिटी था उदयपुर, उस सॉरी नाथद्वारा क्या उदयपुर के पास में जयपुर उदयपुर जयपुर उदयपुर के उधर से नाथद्वारा, और उधर इस तरफ आ जाओ गुजरात में तो रणछोड़ जी डाकोर, वो कई लोग उधर भी जाते हैं। द्वारका यात्रा जब हम जाएंगे तब वो दोनों कर सकते हैं आपस में, द्वारका डाकोर नाथद्वारा। आपके लिए नहीं, खाली गृहस्थ ड्यूटी के लिए। ब्रह्मचारी अगर अथॉरिटीज परमिशन देते हैं तो आ सकते क्योंकि सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे राधा गोपीनाथ है वहां सब ड्यूटी। एक बार महाराज हमको लेके गए थे द्वारका, याद है आप नहीं थे शायद ना, 92 में लेके गए थे द्वारका यात्रा, खाली ब्रह्मचारी गए थे। हाँ नहीं कुछ गृहस्थ डिवोटीज भी थे, नहीं ब्रह्मचारियों का बस जब फेल हो गया था रास्ते में और पूरा यात्रा था, लेकिन ज्यादा 100-200 लोग थे टोटल। हाँ निर्जल एकादशी। ग्यारह रागी गोपीनाथ तक खीर अकेले, यानी आप निराश नहीं होना, क्योंकि अगर आप प्रार्थना करें अथॉरिटी के हृदय भगवान है तो सब बदल सकते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण कृष्ण सबके हृदय में, आपको जो जिस आपको समझे पैसे, हमको कोई कुछ प्रसाद चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है तो बस भगवान से प्रार्थना करो, भगवान चाहे तो देंगे, नहीं दे तो नहीं देंगे। परमात्मा पे हमेशा डिपेंड करना चाहिए, भक्त को प्रयास करना चाहिए, लेकिन मन में जानना चाहिए कृष्ण कंट्रोलर है, ही इज कंट्रोलिंग एवरीबॉडी, परमात्मा स्वरूप में सबको कंट्रोल कर रहे। जार लागे की गोपीनाथ चीर कैला चूरी, अतएव नाम हैला खीर चोर हरी, उनका नाम हो गया खीर चोर हरी। माधवेंद्रपुरी ने तब चंदन अर्पण किया, तब क्या गुणगान कर रहे हैं, कितने ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ के सारे चंदन को लेप किया, भगवत प्रेम से विवल हो गए। रास्ते में मुसलमान देश थे, पहाड़ नदी पार करना था, और तब भगवान के लिए उन्होंने इतना रिस्क लिया, इतनी तकलीफ सहन की। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, तुम्हारे सेवा ते जई तो दुख, सही तो परम सुख, जो भी दुख है आपकी सेवा में वो मेरे लिए परम सुख है। भगवान इतने दयालु हैं, अपने भक्तों पर विशेष दया रखते हैं। जब गोपीनाथ चंदन से ढक गए तो माधवेंद्रपुरी का श्रम सार्थक हो गया। और एक और गुण था उनका कि वो बहुत परम विरक्त थे, शांत, कुछ बोलते नहीं, इनफैक्ट वो अकेले ही ट्रेवल करते थे, क्योंकि किसी को साथ ले जाए तो दूसरी बातचीत हो सकती है, इसलिए अकेले ही बातचीत करते, उदासीन रहते, और ग्राम्य वार्ता के डर से किसी को साथ में नहीं ले जाते। माधवेंद्र पूरी भूखे रहने पर भोजन नहीं मांगते, और भगवान के लिए 80 पौंड, फिर 40 किलो चंदन उठाकर ले जाने के लिए तैयार थे। ये भगवान के भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार निरंतर घिसने से मलय चंदन की सुगंध बढ़ती है, जितना आप घिसो, सब लोग सुन रहे हैं ना, तो चंदन घिसने से, उसी प्रकार एक श्लोक है, सबसे ऊंचा श्लोक जो माधवेंद्रपुरी गाते थे अपने आखिरी दिनों में, और वो श्लोक सुनने से और भक्ति बढ़ती है। रत्न गण मदे जैचे कौस्तुभ मणि, रस काव्य मदे तैचे ए श्लोक गनी। अगर रत्नों के बीच में कौस्तुभ मणि है, उस तरह रस काव्य के बीच में एक श्लोक है जिसको महत्वपूर्ण माना जाता है। ए श्लोक का करी आचे राधा ठाकुरानी, तार कृपा या सूर्या चे माधवेंद्र वाणी। श्लोक किसने बोला ओरिजिनली, और उनकी कृपा से कौन बोल रहे हैं अभी, माधवेंद्र पुरी। किबा गौरा चंद्र इहा करे आस्वादन, इहा आस्वादित यार नाही चौथा जन, नहीं चौथा जन, चौथा कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ तीन ही व्यक्ति हैं जो श्लोक का अर्थ जानते हैं, वो तो कौन है, राधा रानी, महेंद्र पुरी और चैतन्य महाप्रभु। शेष काले ए श्लोक का पठिते पठिते सिद्धि प्राप्ति हैला पुरी र श्लोक रही थे। अंत समय वो यही श्लोक को गाते गाते उन्होंने देह त्याग किया। तो कौन सा श्लोक था, अब बोली, ऐ दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्यते, हृदयम त्वदलोक कतरम दयित भ्राम्यति किं करोम्यहम्। ऐ दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्यसे हृदय त्वदलोक कातरम दयित भ्राम्यति किं करोहम्। श्री गौर निताई की जाए, इसका अनुवाद है, हे प्रभु, आप बोलिए, हे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरापति, मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे, आपका दर्शन नहीं पाने के कारण मेरा क्षुब्ध हृदय अस्थिर हो चुका है, हे प्रिय, अब मैं क्या करूं। ये श्लोक कब बोला गया था, प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं, पहली बात तो ये है कि चार संप्रदाय हैं जिसमें से हम सब मध्वाचार्य के संप्रदाय में हैं। तो मध्वाचार्य से लेकर माधवेंद्रपुरी के गुरु थे लक्ष्मीपति तीर्थ। तो लक्ष्मीपति तीर्थ तक और आगे मध्वाचार्य मध्वाचार्य और बीच में जो आचार्य हैं, कभी माधुर्य प्रेम का वर्णन नहीं आता। जैसे मैंने प्रवचन की शुरुआत में बताया था, ये माधुर्य प्रेम का वर्णन जो है वो माधवेंद्रपुरी से शुरू है। जब कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़कर वृंदावन का राज्य स्वीकार मथुरा में रहने लगे, तब विरह भावना में राधा रानी ने यह श्लोक बोला था। ये विरह की भावना है, भगवान को बोला गया दीन दयाद्र नाथ रे, ये भावना है भगवान को पुकारने की। फीलिंग ऑफ सेपरेशन, प्रभु बोलते हैं फीलिंग द हाईएस्ट टाइप ऑफ भक्ति इज द एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड, भगवान से विरह की भावना का अनुभव होना, ये सबसे ऊंची भावना है। राधा रानी बोल रहे हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, आपके विरह के कारण मेरा मन बहुत दुखी है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। हे कृष्ण, आप बताइए, मैं गरीब हूं, आप दयालु हो, या मेरे पर कृपा करिए, बताइए कब मुझे दर्शन होंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के इन भावों को व्यक्त करते थे, जिन्हें राधा रानी ने वृंदावन में उद्धव को देखकर कहा था। जब उद्धव जी आए थे संदेश लेकर, तब उन्होंने ऐसा अनुभव किया था। इसलिए गौड़ीय वैष्णव में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु में जो भी अपने प्रकट भाव अनुभव किए, वो ईश्वरपुरी से माधवेंद्रपुरी होते हुए तक आए थे। इसलिए माधवेंद्रपुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोलने लगे, आई दीना बोलिए, ए श्लोक पढ़िते प्रभु हैल मुछिते, प्रेमेते विवश हई अपड़िल भूमिते। वो प्रेम से विवल होकर जमीन पर गिर पड़े। आस्ते व्यास्ते कोले करे नील नित्यानंद, क्रंदन करिया तबे उठे गौर चंद्र। महाप्रभु गिर गए, फिर नित्यानंद उनको ऊपर उठाया। महाप्रभु फिर भी गा रहे थे, क्रंदन रो रहे थे, क्या बोल रहे थे, प्रेमोन्मद हैला उठी इति उती धाए, प्रेम से इधर उधर भाग रहे थे। हुंकार करे हासे कांडे नाचे गाए, हुंकार कर रहे थे हरी हरी, और वो गा रहे थे, नाच रहे थे, और सब प्रकार के प्रेम के लक्षण दिखा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। आई दीना बोले बार बार, कंटे ना निसरे वाणी नेत्रे अश्रुधार। आई दीन बोलते हुए उनके आंखों से आंसू आने लगे और उनका कंठ जो है वो गदगद होने लगा, वो कुछ बोल ही नहीं सके। कंप स्वेद पुलकाश्रु स्तंभ वैवरण्या, निर्वेद विषाद जाड़े गर्व हर्ष दैन्य। तो उनको शरीर कांपने लगा, पसीना आने लगा, हर्ष के आंसू प्रकट होने लगे, शरीर का रंग फीका पड़ने लगा, कभी निराश होने लगे, कभी खिन्नता आने लगी, सारे लक्षण दिखाई पड़ने लगे। चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक के प्रेम को सबके सामने प्रकट करने लगे और सब पुजारी देखकर आश्चर्य हो रहे, ये अचानक क्यों हो गया महाप्रभु को, वो कैसा लक्षण प्रकट कर रहे हैं, क्या कारण है। तो फिर महाप्रभु की देखा, सब लोग मेरे को देख रहे, तो अपने को कंट्रोल कर ले, क्योंकि डिवोटी दिखाना नहीं चाहते अपने लक्षण। फिर भोग समाप्त हो गया और आरती हुई, दो बार हो गई हमारे, एक बार में दो बार हो गई। और फिर अच्छे विग्रह को शयन कराया, हम लोग रात को कराएंगे। और फिर पुजारी मंदिर के बाहर आ गए और खीर के सारे 12 बर्तन जो है अभी वहां पर प्रसाद में बांट दिए। महाप्रभु इतने खुश हुए कि उन्होंने भक्तों को खिलाने के लिए 5 बर्तन ले लिए, 5 बड़े बड़े मटके। और ये यहाँ पे जो कैपेसिटी होती है वो भक्ति के अनुसार होती है। महाराज बता रहे थे कि उनकी बहुत इच्छा थी ये खीर खाने की। फिर 1980 में कभी महाराज पहली बार जब वो चांस मिला खीरचर गोपुर, ब्रह्मानंद प्रभु के साथ आए थे। अब ब्रह्मानंद प्रभु बहुत मूर्तियां आप जानते हैं, उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा ही खीर लिया। महाराज बोल रहे हैं मैंने 2-3 मटके खीर के लिए, जनरली महाराज ज्यादा नहीं खाते, लेकिन उसके प्रेम और उसके टेस्ट के अनुसार वो बहुत ज्यादा लेने लगे। तो 5 मटके 5 भक्तों को बांट दिए। फिर एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को बांटने से पहले स्वयं खाने से पहले भी खा लिया था, गोपीनाथ। यस, किसने बोला, विनोद सतीश भाई यस बुद्धिमान है, गोपीनाथ ने पहले ही खा लिया था। और फिर भक्त लोग बहुत खुशी से खाने लगे, नाम संकीर्तन किया, रात को सो गए। फिर मंगल आरती देखी, गोपाल गोपीनाथ पूरी गोसाई र गुण भक्त संगे श्री मुख कैले आस्वादन, गुण में ऐसे गुणों का गान उन्होंने आस्वादन किया। यही तो आख्या न कहिला दोहार महिमा, प्रभु र भक्त वात्सल्य आर भक्त प्रेम सीमा। ये कहानी क्या बताती है, भक्तों का प्रेम और भगवान की कैसे भक्तों पर कृपा होती है, दोनों चीज बताती है। श्रद्धा युक्त हैया इह सुने जे जन, जो भी श्रद्धा से सुनता है, श्री कृष्ण चरण से ही पाए प्रेम धन, उसको प्रेम की प्राप्ति होती है कृष्ण भगवान के चरणों में। और अभी हम लोग जल्दी से आज का जो फेस्टिवल है, मैं 10 मिनट में इसको कंप्लीट बता दूंगा आपको शॉर्ट में, क्योंकि समय थोड़ा लेट हो रहा है, बाकी का हम लोग शाम के समय डिटेल में पढ़ेंगे। ये उस समय की कहानी है जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर में ये फेस्टिवल मनाते हैं, माधवेन्द्रपुरी का तिरुभाव दिवस। अद्वैत आचार्य माधवेन्द्रपुरी के शिष्य थे और चैतन्य महाप्रभु हमेशा माधवेन्द्रपुरी के शरीर में लीला करते थे। यह बताया गया माधवेन्द्रपुरी डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। बाय लॉर्ड्स मर्सी माधवेन्द्रपुरी पजेस्ड ऑल पावर्स एंड देन ही सेज गिव ऑल योर अटेंशन ओ रीडर्स प्लीज हियर द ऑस्पिशियस स्टोरी ऑफ हाउ अद्वैत आचार्य बिकेम अ डिसाइपल ऑफ माधवेन्द्रपुरी। ये कहानी सुनो कि कैसे अद्वैत आचार्य माधवेन्द्रपुरी के शिष्य बने। ये कहानी थोड़ा रिवाइंड करना, यानी चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ है, सब जगह पे बहुत लोग नास्तिक हैं, पूरी दुनिया विष्णु भक्ति से विहीन है और माधवेन्द्रपुरी अकेले ही कृष्ण प्रेम के सागर में तैर रहे हैं। कभी उनका शरीर कांप रहा है, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं और हमेशा कृष्ण के ध्यान में लगे हैं। चलते हुए पुकार रहे हैं हरी हरी
हरी हरी,
हरी, हरी बोलते बेहोश हो जाते हैं करीब 6 या 9 घंटे तक। फिर उनको होश आता है, फिर उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, गंगा बह रही है और कभी कभी उनके वस्त्र भी अप्रकट हो जाते हैं। इस तरह माधवेन्द्रपुरी लीला कर रहे थे, मन में सोच रहे थे ये लोग कोई यहाँ पर कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा, सब अभागे हैं, कृष्ण को यहाँ पर आना चाहिए। कोई उत्सव नहीं दिख रहा, कोई संकीर्तन आंदोलन का उत्सव नहीं दिख रहा, लोग सिर्फ अच्छे कार्यों में लगे हैं और मंगला देवी चंडी देवी की आराधना कर रहे हैं और कोई लोग षष्ठी सांपों की देवी की आराधना कर रहे हैं, ज्यादा एडवांस जो है विषहारी देवी की आराधना कर रहे हैं और मन में प्रार्थना कर रहे हैं धनम देह गोत्रम देह, मेरा धन बढ़े और परिवार बढ़े। और ऑफरिंग कर रहे हैं वाइन और बियर तो नहीं था स्वामी जी, विषय फ्लैश मास अर्पण कर रहे हैं। और सब लोग क्या गा रहे हैं गीत, सब लोग गा रहे हैं कि साथ ये जो हमारे राजा हैं वही योगियों में श्रेष्ठ हैं, वही धरती की रक्षा करने वाले हैं। और कभी कभी ब्राह्मण स्नान करते में एक बार बोलते कृष्णा, बोलिए कृष्णा बोलने के चांस मिले हमको बोलने की, वो दिन में एक बार कभी कभी बोल देते हैं नहीं जैसे चलो बोल, या कोई बोलता पुंडरीकाक्ष ऐसे। और वैष्णव बहुत कम थे और डांस तो कोई नहीं करता कीर्तन में, संकीर्तन होता ही नहीं उस समय। तो माधवेन्द्रपुरी को लगा कि क्या फायदा है, जीवन बेकार है, किसे बोलते नहीं, दिन भर के समय के लिए भी बात नहीं करते, कोई मिला ना हरी बोल कैसे हैं आप, इतना भी बात नहीं करते। और कुछ सन्यासी से मिलने गए, सन्यासी मिले लेकिन सब नारायण, सब सन्यासी क्या बोले, हम नारायण, नमो नारायण, मैं भी नारायण। तो फिर उन्होंने सन्यासी से बात करना बंद कर दिया। फिर भ्रमण करते करते वो सोचे मैं जंगल में जाऊंगा, मैं पूरे भारत घूम गया, मेरे कोई वैष्णव मिला नहीं, अब मैं जंगल में जाऊंगा, फॉरेस्ट बेस्ट जगह है, इस तरह वो सोच रहे थे। और फिर उनको मिले रस्थ्यांतिपुर में शिलाद्वैताचार्य की। और अद्वैताचार्य भी बहुत दुखी थे, माधवेन्द्रपुरी भी दुखी थे कि भक्ति विहीन देख के, तो दोनों बहुत सुखी हो गए एक दूसरे से मिलके दोनों को बहुत खुशी हुई। अद्वैताचार्य ने उनका स्वागत किया और उनको प्रणाम किया और गले मिले, दोनों कृष्ण कथा करने लगे और दोनों अपने शरीरों को भूल गए। माधवेन्द्रपुरी का ऐसी एक्सटसी थी, कभी वो आकाश में एक काला बादल देखते और काला बादल देख के उनको कृष्ण स्मरण होते, बेहोश हो जाते थे। और कृष्ण का नाम सुन के वो जोर से चिल्लाते हरी हरी कृष्ण कृष्ण, एक साथ हजारों लक्षण प्रकट होते। तो फिर अद्वैत आचार्य उनके इतने प्रसन्न हुए, मिलके उनसे इंस्ट्रक्शन लेने लगे और इस तरह उन्होंने फिर निवेदन किया कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। और माधवेंद्र पुरी ने उनको दीक्षा प्रदान की। अब फिर वो होली उत्सव आया जब माधवेंद्र पुरी का तिरुभाव उत्सव था। ये कई वर्षों के बाद की बात है। गौरंगा नित्यानंद सब पार्षद बहुत खुश हुए और कहां कहां से लोग तैयारी करने लगे पता नहीं। शची माता और वैष्णव की अनेक पत्नी, उन्होंने बोला हम प्रसाद बनाएंगे। नित्यानंद बोले मैं सेवा क्या होगी, जो भी वैष्णव आ रहे हैं उनकी पूजा मैं करूंगा। वो नहीं बोले थे मैं टॉप प्रीचर हूं, मैं नाम हट का जो इनॉग्रेटर हूं, इसलिए मैं खाली प्रसाद खाऊंगा सबसे पहले फर्स्ट लाइन में। नहीं, वो सेवा करना चाहते, जैसे हमारे गौरंग प्रभु हैं, वो प्रीचिंग भी अच्छा करते हैं और सेवा करने में भी होशियार है। जैसे जानवा देवी जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी, वो सबके लिए प्रसाद बनाते फिर सर्व करते, फिर सर्वर्स को सर्व करते, फिर लास्ट में थोड़ा और प्लेट भी नहीं बनाते अपने लिए, जैसे हम लोग होते हैं ना, एक प्लेट बना के रखे। मैं जब ह्यूस्टन में था, मैं स्टूडेंट था और मंदिर में रहता था और पढ़ाई भी करता था, तो हमारे ये हमारी सेवा थी प्रसाद सर्विंग की। और हमारे प्रेसिडेंट बहुत दयालु थे, कलाकांत प्रभु, वो हमारी प्रवृत्ति को जानते। तो ये रूल था कि जो भी प्रसाद सर्विंग करेगा उसको पहले प्रसाद खाने को मिला जाएगा। तो वॉलंटियर्स बहुत हो जाते थे क्योंकि लेक्चर चल रहा होता था हमको प्रसाद खाने मिलता। और फिर जब महाप्रसाद शुरू होता था तो हम लोग सर्विंग करते, सब सोचते हैं कि देखो कितने लोग सहनशील हैं, खुद नहीं खा रहे। वेरी मर्सीफुल, ही गेव इवन भागवतम सेट ऑल्सो फ्री ऑफ चार्ज, यू नो, यस स्टडी, यस परंपरा चालू। कोई बोला मैं सेवा करूंगा चंदन घिसने की, कोई बोला कि मैं फूल माला बनाऊंगा, एक बोला मेरी सेवा है पानी लेके आना बस, एक बोला मैं सब कमरे साफ करूंगा, और एक नम्र वैष्णव, सभी नम्र थे लेकिन एक बोला मेरी सेवा है जो भी वैष्णव आ रहे हैं उनके पाद प्रक्षालन, उनके चरण धोना। कोई बोला कि मैं सब छत्र बांधूंगा, कोई बोला कि मैं सब सामान भरूंगा, कोई बोला मैं कीर्तन करूंगा, और कोई बोला मैं गाऊंगा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सब लोग एवरीबडी वर लिकिंग ड्रिंकिंग एंड टेस्टिंग द नेक्टर ऑफ हरी हरी, वो चाट रहे थे, पी रहे थे, गा रहे थे हरी हरी, शंख घंटी मृदंग करताल मंजीरा सब लोग गा रहे थे हरी हरी। किसी को बाहरी चेतना नहीं रही, भूल गए क्या टाइम हो रहा है। और अद्वैत आचार्य का घर जो है वो वैकुंठ धाम बन गया। फिर चैतन्य महाप्रभु को देखेंगे क्या क्या बनाया, दो कमरे चावल के भरे हुए, बकेट में नहीं ऐसे ही पर्वत, वो बकेट कोई होगा ही नहीं इतना बड़ा। जैसे हम लोग उधर गए थे ना, क्या नाम है उसका, नरोत्तम दास खेतुरी, राधानाथ स्वामी महाराज, इंद्रदेव स्वामी महाराज ले गए थे, तो वहां पे कुंड था। हम स्नान करने के बोले नहीं इसमें स्नान मत करो, क्यों बोले ये एक्चुअली पहले दाल का कुंड था, ये खाली पूजा के लिए यूज करते हैं भगवान के, वहां पे दाल बनाए थे कैसे बर्तन में तो फिट नहीं होगी, इतने हजारों लोग, तो कुंड ही पूरा बना देते थे, कुंड में ही भर देते, स्वीट राइस कुंड। हेलो स्विमिंग के लिए जाते हैं ना, अंदर जाओ फीके भी आ जाओ। फिर एक और जगह थे, कई देखा उन्होंने हजारों क्या बोलते जार्स क्या बोलते मटके या बर्तन भरे हुए थे क्रीम के, दूध के, दही के, शुगर केन के और मूंग स्प्राउट के, और पताला स्क्वैश, एग प्लांट, बैंगन, आलू, शाख और सारे कितने प्रकार के शाख, नारियल और तांबूल, और देखा हजारों केले के भरे जैसे गोडाउन में देखते हैं ऐसे, तो भरा हुआ। और देखा दो रूम भरे हुए मूंग दाल के, पांच रूम भरे हुए मटके सब्जियों के, और फिर तेल और नमक और घी। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं मेरे अंदर शक्ति नहीं है गिनने की कितने थे। फिर गौरंगा महाप्रभु आए और बोले हरी हरी, अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट हैव सच ऑपुलेंस, ये ईश्वर एक मानव में नहीं हो सकता है, मेरे को लगता है ये अद्वैत जो है ये शिव जी है। और वो सही है ना, अद्वैत आचार्य किसके अवतार है, सदाशिव, इनकार्नेशन ऑफ सदाशिव, ये मानव के लिए संभव नहीं है। फिर चैतन्य महाप्रभु इनडायरेक्टली बता रहे थे ये सदाशिव है। कोई व्यक्ति न जानते हुए भी अगर शिवजी का नाम लेता है तो सारे पापों से दूर हो जाता है, शिव शिव, अगर वो जानता है तो और भी ज्यादा अच्छा। ये दक्ष की कहानी में जब शिवजी का अपराध होता है, पार्वती देवी आते हैं और वो तो उस समय जो है निशान ठाकुर को बार बार कर रहे हैं, मैं कथा सुनाता हूँ। तो उस समय पार्वती देवी देखते हैं कि शिव जी का जो है ठीक से आदर नहीं हुआ ना, तो बहुत गुस्से होते हैं। तब वो बोलते हैं, हे पिताजी, तुमने सबसे बड़ा अपराध किया है मेरे पति का अपराध करके, क्योंकि मेरे पति इतने महान है कि जो कोई व्यक्ति दो अक्षर बोलता है शिव, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसे है मेरे पति, और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जो उनके प्रति अपराध करे। कृष्ण भी बोलते हैं कि जो व्यक्ति शिवजी का आदर नहीं करता वो मेरे को नहीं प्राप्त कर सकता, वो पापी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण भक्ति छोड़ दें, लेकिन शिवजी का भी आदर करें। तब फिर चैतन्य महाप्रभु, तब प्रसाद अभी सर्विंग शुरू हुआ, कौन कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, पता नहीं चल रहा। और वैष्णव सॉरी प्रसाद से पहले सब वैष्णव को चंदन लगाया गया, सबको फूल माला पहनाई गई। और नित्यानंद प्रभु रेसलर के मूड में थे, कुश्ती करने वाले, और सबका स्वागत कर रहे थे। अद्वैत आचार्य का क्या सेवा थी, वो डांस कर रहे थे नॉन स्टॉप, पूरे घंटे लोग आ रहे थे और डांस करते जा रहे थे। हरिदास ठाकुर वो भी डांस कर रहे थे, ये डांस करता रहता। फिर एक्चुअली ये प्रसाद सर्विंग से पहले सब लोग डांस कर रहे, फिर अद्वैत आचार्य थक गए, हरिदास ठाकुर रुक गए, फिर चैतन्य डांसिंग सोलो, सोलो यानी अकेले डांस करते रहे। फिर डिवोटीज डांस कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे थे, फिर सब लोग बंद हो गए, फिर चैतन्य महाप्रभु अकेले डांस कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु बीच में और सब भक्त साथ साथ। अंत में चैतन्य महाप्रभु और सब भक्त बैठे प्रसाद के लिए, और अद्वैत आचार्य लेकर आए प्रसाद। चारों दिशा में जैसे बीच में चंद्रमा और चारों तरफ चारे, ऐसे बीच में गौर चंद्र और आसपास सब भक्त बैठे थे। चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हुए, बोले आज के दिन जो भी माधवेंद्रपुरी की स्थिति का आदर करते हैं उसको कृष्ण भक्ति मिलेगी। श्री गौरंग महाप्रभु की। एक्चुअली जनरली मैं जब मायापुर जाता हूँ इस समय, और 11 तक जब फेस्टिवल के दिन शांतिपुर में प्रसाद खाते भी और सर्विंग भी करते हैं, जयपतक स्वामी महाराज, कविचंद्र महाराज, फिर वहीं से क्योंकि कलकत्ता का आधा रास्ता हो ही जाता है, वहीं से कलकत्ता शाम से बॉम्बे मिल से मैं आता। तो आज निकलेंगे 11, आज 11 है ना, 13 को पहुंच जाते हैं, तो गुरु पूर्णिमा से पहले। लेकिन आज मैं जल्दी आ गया क्योंकि यहाँ पे 3 दिन का क्लास करना था, और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इतने उत्साह से आए, इसलिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जय बोलो तो भी मैं अंत नहीं करने वाला। हमने फर्स्ट डे अनाउंस किया था कि क्लास 9 बजे खत्म हो जाता है, उसको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन आप स्पेशल गेस्ट इसलिए आपकी खुशी के लिए 2 मिनट और बोलो। ये मेरा एरिया है इसलिए। अभी कोई अथॉरिटी है नहीं सब, तो इसलिए दयालु अथॉरिटी। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, फिर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को पास में ले आए और उनके माथे पूरा चंदन भर दिया, उनको फूल माला पहना दी, और हर एक वैष्णव को फिर से माला पहनाई, और फिर जोर से हरी हरी पुकारने लगे, हरी हरी। फिर वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, अगर लाखों साल भी मैं बोलता रहा तो ये लीला का अंत नहीं होगा, वो अंत नहीं कर सकते तो हम कैसे अंत करेंगे। इसलिए जैसे आकाश में पक्षी जो होते हैं वो बहुत ऊंचे तक जाते हैं, एक्चुअली आकाश की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हर एक पक्षी अपने अपने कैपेसिटी से जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की लीला अनंत है, लेकिन हर एक भक्त कर्तव्य है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार वर्णन करना, और अंत तो कोई भी नहीं जान सकता। इनफैक्ट यहाँ नहीं बताया, लेकिन मेरे को पेज नहीं मिल रहा, एक पेज में है कि सब शाख का वर्णन भी किया है, कौन कौन से शाख थे। एलियांची शाख, एक शाख है जो खाते ही कृष्ण प्रेम मिलता है, एक शाख ऐसे वैष्णव की सेवा मिलती है, और अभी भी ये शाख आप देखोगे बंगाल में स्पेशल लेकर आते हैं। ये राधा द्वितीय प्रभु जिसके अंडर कृष्ण प्रभु सेवा करते थे वो सब जानते हैं स्पेशल शाख, और मायापुर में मायापुर कंपाउंड में उगाते हैं ये शाख को, जिससे डिवोटीज के लैंड में प्रोड्यूस होकर। भक्ति सिद्धांत ठाकुर को इतना प्रेम था कि मायापुर में उगे हुए ग्रेन्स का, कि वो कलकत्ता में भी रहते थे तो डिवोटीज को बोलते थे कि मायापुर के जो उगाया सब्जी वो बना के पैक करके मेरे लिए कलकत्ता भेजो, 3-4 घंटे का रास्ता। और अपने गुरु महाराज गोरकिशोर बाबा जी महाराज का रेमिनेंट्स भी वो बोलते थे मेरे लिए वहां भेजो, वे नहीं बोलते अभी मैं बड़ा भक्त हो गया, मैं हाई फाई प्रीचर हो गया, मैं सोचते थे मैं गुरु का दास हूं बस। चलो माधवेंद्रपुरी की जाए, चलो प्रभुपाद की जाए। मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और आज शाम को हम लोग चैतन्य भागवत करेंगे, और कल 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 भी चैतन्य भागवत कम्प्लीट करेंगे। अब तो मुझे आशीर्वाद दो कि अंत समय मैं कृष्ण का नाम ले सकूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।